May the Lord bless you, Mr.
Thank you, Brother Arnold.
Thank you much. Well, we are glad to get back in the tabernacle again this morning. Just a little bit...
खड़खड़ा रहा है। इस सप्ताह हमारे पास ऐसा शानदार समय था। ये मेरे लिए आशीषों का महान सप्ताह रहा। आप जो बहुत से यहाँ पर हैं, मैं निश्चित हूँ कि आपके लिए भी रहा है। बहुत सो ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। हमारी इस सभा का यही उद्देश्य था। यहाँ पर लोगों को समाने के लिए अधिक स्थान नहीं था, इसी कारण हमने बाहर इसका विज्ञापन नहीं किया। समझे, हमने केवल एक रात्रि के बाद दूसरी रात्रि लोग चले गए। ये हमारे स्थानीय लोग थे और हमने केवल इसका उल्लेख यहाँ अपने ही लोगों में किया था। और अभी चंदा देने के बारे में, टोकरियों के लिए, ये हमारे स्थानीय लोगों के लिए है। कैसे? ये हमारी कलीसिया की बात है। ये हमारा नियमित संडे स्कूल है, समझे। और वे ठीक है, यदि कोई इस मामले में सहायता करना चाहता है, हम निश्चय रूप से इसे गरीब के पास ले जाएंगे। नगर में हमारे पास परिवार हैं जिनके पास कुछ नहीं है, बड़े दिन के लिए कुछ नहीं होगा। वे इस कलीसिया पर निर्भर कर रहे हैं और इसलिए इस प्रकार से क्यों ये इस उद्देश्य के लिए जाएगा। डीकनों में से एक उन्हें बता देगा कि ये किस लिए है, या पीछे मेरी बहन इसे लेगी। अब मैंने सुना है कि आज इस प्रातः बपतिस्मे की सभा हो चुकी है। इससे पहले उन्होंने मुझे हरा दिया है, क्या नहीं? ठीक है, फिर आज रात्रि हम एक और लेंगे, इसलिए फिर उनमें से दो लेंगे। इसलिए हम समझते हैं, या आज रात्रि सभा के पश्चात कम से कम तालाब को हम एकदम से भर दें और बपतिस्मे की सभा होगी। और उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ को बपतिस्मा लेना है, इसलिए कुछ मिनटों पहले बिली दौड़ा और मुझे बताया, कहा एकदम से मत आओ, क्योंकि पहले भाई नेविल को बपतिस्मे देने हैं। और कहा यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्हें सीधे वहाँ से जाना है, और वे इस बात में निश्चित नहीं थे कि हम आज प्रातः बपतिस्मे की सभा करने जा रहे हैं। स्मरण रहे, ये तालाब हमेशा खुला है, हमेशा किसी भी समय, दिन रात, किसी भी घड़ी बपतिस्मे के लिए तैयार है। दूसरे सेवक यहाँ आकर तालाब को बपतिस्मे के लिए प्रयोग करते हैं। इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ कुछ समय पहले पार्क मेथोडिस्ट कलीसिया में मैं वहाँ एक सभा में, प्रचार सभा में प्रचार करने के लिए था, और उस प्रिय भाई ने कहा कि उस दिन मैं वहाँ भाई ब्रैनम के वहाँ उसे प्रयोग करने के लिए था। कहा, आप उस चीज को क्या कहते हैं? मैंने कहा, एक मेथोडिस्ट के लिए बपतिस्मा कक्ष कहना कठिन होगा। वहाँ उनके पास एक छोटा कटोरा था, आप जानते हैं कि वे छिड़काव करते हैं, एक छोटी सी चीज वहाँ रखी थी। मैंने कहा, एक मेथोडिस्ट के लिए ये शब्द बहुत कठिन है कि बपतिस्मा कक्ष कहें। मैंने कहा, उसने कहा, उनमें से एक हम यहाँ आसपास चाहते हैं। मैं इस प्रकार की चीज में विश्वास करता हूँ। इसलिए स्मरण रखें, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कोई भी जो इसका प्रयोग करना चाहे, ये यहाँ है, ये खुला है, पानी मुफ्त है, और हमारे पास एक छोटी सी छड़ है, छोटी सी पानी गर्म करने की छड़, हम उसमें डालते हैं, गर्म करने का यत्न करें। मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसे गर्म नहीं करता। मैंने अपने जीवन में कभी भी जो सबसे ठंडा पानी अनुभव किया, ये वो था। और मैंने बहुत बार बपतिस्मे दिए हैं जहाँ पर मैंने अपने पैर से बर्फ किनारे की ओर मुंडेर पर लात मारकर फेंकी, इस तरह से कि उन्हें बपतिस्मा दूं, और तब घर चला गया, वहाँ जाने का यत्न करता जहाँ मुझे ठहरना होता था, और अपने कपड़े बदले, और चलते हुए मेरे कपड़े मुझ पर जम जाते थे। मैं कठिनाई से कदमों को आगे बढ़ाता था, मेरी पैंटों के पाँचे कड़े से हो जाते थे कि कदमों को बढ़ाऊं, और वो भी इतना ठंडा नहीं होता था जैसा कि ये है। मैंने अपने जीवन में इतना ठंडा पानी कभी नहीं देखा, मैंने ऐसा इतना ठंडा पानी कभी नहीं देखा। भाई कैली, इसने मुझे इतना जमा दिया कि मर जाऊं। मैं हर बार इसमें जाता हूं, और इसलिए बाद में, ये ठीक है, जब आप अच्छा अनुभव कर रहे होते हैं तो ये नहीं होता है। बहन कैली कहती हैं, जब आप अच्छा अनुभव कर रहे होते हैं तो ये नहीं होता है। हम लोगों के साथ इस आनंद झुंड के लिए प्रसन्न हैं। सब विभिन्न प्रकार के नामधारी झुंड मिलजुल गए हैं। ये केवल परमेश्वर के बालक एक साथ जमा हैं। यहाँ पर जो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, नाजरीन, पिलग्रिम होलीनेस, कैथोलिक, यहोवा विटनेस, क्रिश्चियन साइंस, पेंटिकॉस्टल, हर चीज के लोग एक साथ जमा हैं। यहूदी भी, इसके लिए प्रभु की महिमा हो, धन्यवाद। हम यहूदी के लिए बहुत ही प्रसन्न हैं। जी हाँ श्रीमान, यदि ये यहूदियों के लिए नहीं होता तो मैं नहीं जानता कि हम कहाँ होते। ये ठीक बात है, अब ये बहुत अच्छा है। स्वर्ग भी ठीक इसी प्रकार से होने जा रहा है। क्योंकि स्वर्ग सबको एकत्र करने जा रहा है, सारे विभिन्न नामधारियों को, और यही कारण है कि हम स्वर्गीय स्थानों पर एक साथ बैठे हैं। और डॉक्टर, ये एक छोटा सा मनोविज्ञान था, मैं जानता हूँ कि ये था वो, मैं इसके इतना निकट नहीं था। आज प्रातः थोड़ा सा गला खरखरा रहा था, ये दूसरे गियर में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद और आरंभ हो जाएगा। आप जानते हैं, जब मैं आरंभ हो जाता हूँ मैं विश्वास करता हूँ। अब पिछली रात्रि मेरे पास कुछ प्रश्न आए जो कि इस सभा से संबंधित हैं। यदि प्रभु ने चाहा तो आज रात्रि मैं इसका जल्द ही उत्तर दूंगा, इसके पहले कि हमारी नियमित आज रात्रि की प्रचार सभा समाप्त हो। और इसलिए आज रात्रि अवश्य आए यदि आप आ सकते हैं, और यदि प्रभु ने चाहा तो मैं एक जोरदार विषय पर प्रचार करना चाहता हूँ, इस बेदारी की समाप्ति पर। आज रात्रि जहाँ तक हम जानते हैं, जब तक पवित्र आत्मा आगे अगुवाई ना करे, ये ठीक है कि आप में से बहुत सों को आज अपने घरों पर वापस जाना होगा, या इस सभा के पश्चात संभव है इस प्रातः। हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपकी बहुत बहुत सराहना करना चाहते हैं, और हम आपको बड़े दिन और नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको नई चीजें दे, अधिक से अधिक नया जीवन जो आप ढूंढ रहे हैं और जिसके भूखे हैं। मैं स्वयं भी यही कर रहा हूँ, परमेश्वर की अधिकाई के लिए भूखा हूँ। यहाँ और बहुत से प्रश्न हैं, वहाँ कुछ मुझे तभी कमरे पर मिले, उन्होंने मुझे दिए कुछ प्रश्न। पिछली रात्रि कुछ भाइयों ने मेरे पुत्र को दिए और मुझे उन्हें लेने का अवसर ही ना मिला, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी जेब में डाल दिया और बहुत देर हो गई थी। और उनमें से कुछ पीछे मती यानी इब्रानी 6:4 से संबंधित थे। बहन मामी ने अभी कुछ मिनटों पहले ये कहा कि वो इसे पाकर बहुत ही आनंदित थी, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले यही प्रश्न पूछा था। ये बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाली बात है, परंतु मैं निश्चित हूँ कि आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ये क्या था। मुझे आशा है कि आप समझ गए, ये एक मसीही नहीं है जो आत्मा से भरा है। अब यदि आप इब्रानी 10 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो उसने वहाँ कहा है वो वहाँ उससे भिन्न है, जो वो एक मसीही के लिए क्षमा न होने वाले पाप की बात कर रहा है, ये भरे हुए व्यक्ति के लिए है। परंतु ये व्यक्ति है जो किनारे का विश्वासी है, जिसने अभी हाल ही में चखा है। हमारे पास ये सब कलीसियाओं में है, कलीसिया में आते हैं और ओ, वे जो प्रभु करता है उसकी सराहना करते हैं, परंतु वे इसमें कभी नहीं आते। वे किसी को चंगा होते देख सराहना करते हैं, परंतु वो कभी भी प्रयत्न नहीं करते कि बाहर जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करें और अस्पतालों में जाएं या कुछ ऐसा करें जो ठीक हो। देखिए, इसी प्रकार से आपने इस प्रकार के लोग देखे हैं, इन्होंने चखा है, इन्होंने देखा है। जैसे कि मैंने कहा केन का, केनियों का, या वे इसराइली जब वे कनान के पास पहुंच रहे थे, वे लगभग अंदर पहुंच गए थे। वे इतनी दूर पहुंच गए थे कि उस देश के फलों को चख लें, परंतु उन्होंने कहा, ओ, हम इस योग्य नहीं हैं, हम इसे नहीं कर सकते। परंतु यहोशू और कालिब जानते थे कि वे इसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। और इसी विषय में पौलुस बोलने का यत्न कर रहा था, जो इसके समीप आए थे, उन्हें पीछे का संदर्भ दे रहा था, बहुत ही समीप, परंतु वे स्वयं इस पर अपने हाथ नहीं डालेंगे, समझे। वे कहते हैं, ओ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, उन कलीसियाओं में, मैं होलीनेस की कलीसिया में जाता हूँ, पेंटिकॉस्टल कलीसिया में, मैं इसमें जाता हूँ। परंतु क्या तुमने जब से विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? ओ नहीं, मैंने अभी तक ये नहीं किया। देखा, आप यही हैं। परंतु वास्तविक विश्वासी जब तक वो इसमें नहीं आ जाएगा, वो चैन से नहीं रहेगा, उसे तो इसे जाकर पाना ही है, समझे। अब इस प्रकार के किनारे के विश्वासी, यही वो व्यक्ति हैं जिनके विषय में पौलुस बोल रहा है। जो भी है, अब इस प्रातः ये नियमित सुसमाचार की सभा है, इस प्रातः के लिए प्रभु ने चाहा मुझे पर्याप्त आवाज दी है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये घोषणाएं हैं। मैं निश्चित नहीं हूँ, परंतु मैं सोचता हूँ ये हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, भाई नेविल बाकी सब कर दी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब जान लें, यदि आप कभी इस मार्ग से निकलें, आप अब इन्हें जिन्हें घर जाना है और सांझ की सभा के लिए नहीं रुक सकते। मैं चाहता हूँ कि आप जान लें, यदि आप किसी भी समय कभी यहाँ हो, मेरी इच्छा है कि ऐसा हो, आप आए और हमारे पास्टर नेविल को सुने। हमारे पास इस आराधनालय में एक सच्चा पास्टर है, भाई ऑर्मन नेविल। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर बैठे हैं, मैं इन्हें वर्षों से जानता हूँ और ये कभी नहीं बदले, जरा भी नहीं। ये अब भी ऑर्मन नेविल हैं, प्रभु का एक दास। आप उन पर निर्भर कर सकते हैं, एक विश्वासी योग्य, ईमानदार, एक शानदार प्रचारक। मैं वहाँ पीछे बैठता हूँ और मैंने समस्त संसार में प्रचारकों को सुना है, परंतु कभी कभी ये ऐसी बातें प्रचार करते हैं जो मुझे आश्चर्यचकित करती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको दूर उन छोटी बातों में ले जाते हैं जो वो प्रयोग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हर बार जब मैं आता हूँ तो उनके उपदेश में से लगभग 15 विषय वाक्य लेता हूँ जब मैं आकर इसे लिखता हूँ और घर जाकर, ओ प्रभु क्या ये एक संदेश नहीं बनाएगा, ओ प्रभु क्या ये एक संदेश नहीं बनाएगा, और इसे लिख लेता हूँ। इसलिए आकर हमारे भाई नेविल को सुने और हमारे लोगों से मिले। ये निर्धन लोग हैं, वास्तव में निर्धन, परंतु ये प्रभु से प्रेम करते हैं और ये आपसे प्रेम करेंगे, और इसलिए हम प्रसन्न हैं कि आप हमारे साथ हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। अब आइए एक क्षण के लिए अपने सिरों को वचन में जाने से पहले झुकाएं। अनुग्रहकारी प्रभु, हम अब उतनी ही श्रद्धा से आते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि कैसे आएं। हम विश्वास करते हुए यीशु मसीह के नाम में आते हैं कि आपने हमसे प्रतिज्ञा की है उसके द्वारा कि हम उसके नाम से कुछ भी मांगेंगे आप सुनेंगे। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज प्रातः आप इसे हमारी भेंट बना देंगे। हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं उसके लिए जो आपने पिछले सप्ताह हमारे लिए किया। बहुत से शोकित हृदय आनंदित हो गए, बहुत सारे लोग आनंदित हो गए, और बहुत से जो उलझन में थे अब चिल्ला रहे हैं जय जो यीशु मसीह के द्वारा है। हम इन बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज दूसरी बार होगा कि आप अपने लोगों से भेंट करें, और हम यहाँ पर एकत्र हैं उन सब विभिन्न प्रकारों में से, मैं कहूँगा नामधारी कलीसियाओं में से, कुछ विभिन्न विश्वासों में से हो सकता है वचन में मित्र भाव से सहमत ना हो, परंतु कोई भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, यहाँ तक कि यहूदी बहन को भी जिसने अपना हाथ उठाया है। हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में एकत्र हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा फिर से ताजगी में हम पर उंडेला जाएगा। प्रभु, इस प्रातः हमें नया बपतिस्मा दें या नए सिरे से भरें, और हम मांगते हैं कि आप रोगियों दुखियों को चंगा करेंगे, वे जो आवश्यकता में हैं। यहाँ ये व्यक्ति पहिए वाली कुर्सी में बैठा है, दूसरे बाहर हैं, संभव है हृदय रोग के साथ, कुछ कैंसर के साथ। प्रभु, वे लोग मर रहे हैं और हमारे देश के मूल्यवान डॉक्टरों ने उनके मामलों का रोग निदान किया है और जितनी गहराई में जा सकते हैं गए, और हो सकता है शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशनों से, और तब भी वो शैतान उन्हें पकड़े हुए है, वो उनके जीवन को लेने पर ठना हुआ है, और वे कहीं और से अपने चाकू से काटेंगे और वे कोमल हाथ उनकी सहायता करने का यत्न करते हैं, परंतु वो प्रेत आत्मा दूसरे कोने में भाग जाती है और फिर तोड़ फोड़ मचाती है, क्योंकि वो डॉक्टर से छिपने की क्षमता रखता है, परंतु परमेश्वर, वो आपसे नहीं छिप सकता। आप जानते हैं कि वो ठीक किस स्थान में है, और आपके विश्वास के वचन और सामर्थ्य से उसे हटना होगा। और हम आज तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हर दुष्ट चीज को लोगों से अलग कर देंगे, ताकि वो स्वस्थ और हमारे प्रभु परमेश्वर की आशीषों में आनंदित हों, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब यहाँ पर बहुत सारे रुमाल रखे हैं और हम उन पर प्रार्थना करेंगे, और यदि यहाँ आपके पास नहीं है और आप एक चाहते हैं तो ठीक है, आप केवल हमें इस 225 पोस्ट बॉक्स पर लिखें और हम तुरंत आपको भेज देंगे। ये इब्रानियों की पुस्तक प्रेरितों की पुस्तक के 19वें अध्याय में पाया जाता है, जहाँ हम रुमाल या कपड़े लोगों से लेकर उन पर प्रार्थना करते हैं।
Let us turn this morning now in the scriptures to the book of Isaiah.
आइए आज प्रातः हम वचन में यशायाह की पुस्तक उसका एक अध्याय यशायाह एक निकालेंगे, जबकि हम वचन का एक भाग पढ़ते हैं।
While you're turning to this book to follow us in the reading,
और जबकि आप हमारे साथ पढ़ने के लिए इसे निकाल रहे हैं, हम होने वाली चंगाई सभा के विषय में कुछ बोलना चाहते हैं। अब हम ये कहने का यत्न नहीं कर रहे हैं कि यहाँ हम पहले स्थान पर दिव्य चंगाई करते हैं। हम करते हैं क्योंकि दिव्य चंगाई छोटा है और आप बड़े को छोटे पर नहीं रख सकते। परंतु हम यीशु मसीह की सेवकाई में विश्वास करते हैं, उसमें 86% दिव्य चंगाई थी और लोगों का ध्यान दिव्य चंगाई से पकड़कर इस अनुभव को लाया गया कि वो परमेश्वर था। उसने कहा, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते कि मैं वो हूँ, तो उन कामों का विश्वास करो जो मैं करता हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता हूँ तो मेरा विश्वास मत करो, परंतु यदि मैं अपने पिता के कार्य करता हूँ तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, तो फिर कामों का विश्वास करो। देखिए, एक मनुष्य होकर वो स्वयं को परमेश्वर बनाता है। क्रूस पर या ठीक क्रूस के पहले उन्होंने उससे कहा, हम तुझे भले कामों के लिए पथरवा नहीं करते जो तूने किए, परंतु हम तुझे इसलिए पथरवा करते हैं क्योंकि तू एक मनुष्य है और स्वयं को परमेश्वर बनाता है। वो परमेश्वर था, वो था, परमेश्वर उसमें था, और इसलिए उसने कहा, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते तो मेरे कार्यों का जो मैं करता हूँ विश्वास करो। समझे, केवल कर्मों का विश्वास करो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं। अच्छा, अब वही बात आज है। पृथ्वी पर कोई मनुष्य परमेश्वर नहीं है, निश्चय ही नहीं। हम सब मनुष्य हैं, प्रत्येक पाप में जन्मा, अधर्म में पले, संसार में झूठ बोलते हुए आए। परंतु जैसे हमने इस सप्ताह में स्पष्ट रूप से देखा, ये दर्शाया कि परमेश्वर एक समय अपनी सृष्टि के ऊपर रहा पाप के कारण, फिर वो अपनी सृष्टि के साथ रहा शरीर के रूप में। यीशु मसीह अपना डेरा हमारे साथ वास किया, देहधारी हमारे पाप से पीड़ित होने को और दर्द और घोर व्यथा और वे बातें जो हम करते हैं। तब उसने एक कलीसिया को पवित्र किया ताकि वो उसमें रह सके। इसलिए वो परमेश्वर हमारे ऊपर था, परमेश्वर हमारे संग, परमेश्वर हम में। यीशु ने कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है और मैं तुम में और तुम मुझ में। और आप वहाँ देखते हैं, ये परमेश्वर है जो कार्य कर रहा है। इसलिए जब एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से स्वयं को पवित्र आत्मा को देता है और बोलता है, तो ये मनुष्य नहीं बोल रहा है। मैं ये अनुभव से जानता हूँ। ओह, मसीह के साथ मेरा ये छोटा सा अनुभव, मैंने बहुत बार देखा है कि वो मुझे स्वयं उसे समर्पित करने की अनुमति देता है, जब तक मैं ये ना जानूं कि मैं क्या बोल रहा था। और मैं ये नहीं कहता क्योंकि संसार में कोई भी नहीं है, परंतु उसने ये कहा। वो महिला हैटी पीछे बैठी है। उस दिन जब ये नई सेवकाई जो मैं विश्वास करता हूँ कि आज प्रातः आएगी, और आप सबने इसके विषय में सुना है, और जब हम बैठे थे और वहाँ कम से कम 8 or 10 अब यहाँ बैठे हैं, वहाँ उस समय उपस्थित थे, और जब पवित्र आत्मा उस स्त्री की ओर मुड़ा और उसे बताया कि वो जो भी चाहे मांगे तो वो उसे दे दिया जाएगा। आप सोचते हैं कि वो मैंने कहा होगा? यदि मैं कर सकता होता तो मैं अभी फिर कहता, परंतु मैं वो नहीं कह सकता। और मैं थरथराया और मैं इतना दुर्बल था। भाई बैंकवुड वहाँ खड़े हैं, मेरे साथ अगले उस पे बैठे थे, और पसीना मेरे हाथों पर से बह रहा था। मैं इतना दुर्बल हो गया था, जब तक उठकर मैंने घर नहीं छोड़ दिया। इसने मुझे इतना भयभीत कर दिया। परंतु महिला ने एक महानतम चीज मांगी जो कोई भी मांग सकता था और पा सकता है। देखिए, वो परमेश्वर था, वो मनुष्य नहीं था। मनुष्य इन कार्यों को नहीं कर सकते। यीशु ने पेड़ से कहा, कोई भी मनुष्य तुझ में से नहीं खाएगा। और चेलों ने अगले दिन, कितनी जल्दी उसने तभी कार्य करना आरंभ कर दिया। अगले ही दिन वो सूखने लगा, और उन्होंने कहा, देखो कितनी जल्दी पेड़ सूख गया। और उसने कहा, परमेश्वर में विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि मैं नहीं परंतु यदि तुम, जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा हट जा और संदेह ना करे परंतु विश्वास करे, जो कुछ भी उन्होंने कहा घटित हो जाएगा। जो आपने कहा वही पा सकते हैं। ये परमेश्वर आप में है। परमेश्वर को छोड़ पहाड़ को कौन हटा सकता है? इस प्रकार की बातें कौन घटित कर सकता है सिवाय परमेश्वर के। इसलिए आप देखिए, बिना किसी संदेह के परमेश्वर अपने लोगों में है। तब हमें चाहिए कि एक दूसरे का सम्मान करें, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जो भी हो, अपनी नामधारी सीमाओं से बढ़कर हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। कोई मतलब नहीं यदि हम एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते। तो हो सकता है चेले वे सहमत नहीं हो सके, वे जानना चाहते थे कौन सबसे बड़ा बनने जा रहा था, और बहुत सी बातें। यूहन्ना, मरकुस और पौलुस वहाँ थे, उनमें था, और पतरस और पौलुस आपस में सहमत ना थे। परंतु प्रेम के बंधन, हम भी आज इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि सारे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, वे जो भी हैं, हम एक साथ मिलकर एक मसीही इकाई के समान हैं। अब हम आत्मा से भर जाने का यत्न कर रहे हैं कि परमेश्वर के अधिक समीप आ सकें। यही दर्शन है। अब क्या आपने यशाया एक निकाला? आइए 14वें पद से आरंभ करें। और मैं एक मूल पाठ लेने जा रहा हूँ, प्रभु ने चाहा तो 18वें पद से अपना प्रसंग लूंगा। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अगरवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आप जानते हैं, हाल ही में हमने सम्मेलनों के विषय में बहुत कुछ सुना है। लोग एकत्र हो रहे हैं, यही यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, एक सम्मेलन अपने लोगों के साथ। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। पिछले कुछ दिनों से हम यही कर रहे हैं, और राष्ट्र के विषय में बहुत कुछ है। आज राष्ट्र के मामले सम्मेलनों पर आधारित हैं। यहाँ कुछ समय पहले, मैं इसे सरलता से स्मरण कर सकता हूँ, और बहुत से लोग स्मरण कर सकते हैं, वे बड़े चार सम्मेलन, उन्होंने संसार के चार बड़े नेताओं को एकत्र किया, शांति प्रिय संसार के, और उनका सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में उन्होंने इस बात का निर्णय लेने का यत्न किया कि करने के लिए सबसे अच्छा क्या होगा।
Then we had the Geneva conference recently. We're at Geneva.
और तब हाल ही में जनेवा सम्मेलन हुआ। जनेवा में संसार के शांति प्रिय लोग एक साथ जमा हुए, संसार की शांति के विषय में एक दूसरे से पूछने और आपस के परामर्श के लिए।
That was called the Geneva.
ये जनेवा सम्मेलन कहलाया था। अब यदि मैं गलती ना करूं तो कुछ समय पहले उनका पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, और समस्याओं के विषय में विचार विमर्श करने के लिए पेरिस में जमा हुए और शांति लाने का यत्न किया। और अब हमारे प्रिय राष्ट्रपति ड्विट आइजनहावर स्वतंत्र संसार की यात्रा कर रहे हैं। इससे अखबार भरे पड़े हैं, और श्री आइजन आवर के रेडियो संसार के स्वतंत्र लोगों से बात कर रहे हैं। सम्मेलन के बाद सम्मेलन वो करने का यत्न कर रहे हैं और वे अखबारों में बताते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न स्थानों में उनका स्वागत किया गया और किस प्रकार से वे अमेरिकन गीत गाते हैं या झंडे को ऊपर उठाते हैं, झंडा चढ़ाते हैं जब वे आते हैं, और भिन्न लोग उन्हें उपहार आदि देते हैं। ये वो शांति प्रिय देशों के लोग हैं, और मैं सोचता हूँ कि हमें श्री आइजन आवर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जबकि वे अपनी पूरी शक्ति इस राष्ट्र को बनाए रखने के लिए लगा रहे हैं, जहाँ हम इस प्रकार की सभाएं कर सकते हैं स्वतंत्र। अमेरिका अपने सारे पापों और अपनी सारी परेशानियों में अब भी संसार का सबसे अच्छा अपने पास रखता है, मैं ये विश्वास करता हूँ, और इसके होने के लिए परमेश्वर सहायता करता है और सदा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमारे कुछ प्रिय सिद्धांत हैं कि ये बूढ़ी पृथ्वी लहू में नहाई है ताकि इन सिद्धांतों की रक्षा की जाए। इसलिए मैं सोचता हूँ हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर श्री आइजन आवर के साथ होगा। बूढ़े हैं और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, और वो मनुष्य अपने सामाजिक प्रभाव में और भाषण दे रहे हैं और अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। यदि यहाँ तक कि आप उनसे राजनीति में सहमत ना हो तो अब उनके लिए प्रार्थना करें। ये आपका राष्ट्र है जो कि दांव पर है। सम्मेलन किस लिए किया जाता है? इन सम्मेलनों का क्या कारण है? कोई तो कारण होना चाहिए, या फिर ये सम्मेलन नहीं होने चाहिए। उन्हें एक निश्चित निर्णय पर आना ही है कि वे क्या करने जा रहे हैं। इसलिए सम्मेलन होते हैं कि निर्णय लिए जाएं। एक व्यक्ति एक स्थान में और दूसरे स्थान में और भिन्न भिन्न विचार और छोटी छोटी बातें उठ खड़ी होती हैं, और यहाँ पर कुछ है और वहाँ पीछे, उन्हें एक साथ जमा होना है और सम्मेलन करके और तब निर्णय लेना है कि वे इस विषय में क्या करने जा रहे हैं, और इसलिए वे ये करते हैं। और निर्णय लेने के पश्चात या सम्मेलन तय करना, उनके पास कोई निश्चित स्थान होना चाहिए कि इस सम्मेलन को करें, और यदि आप ध्यान देंगे कि वे सदा ऐसे स्थान को खोजने का प्रयत्न करते हैं जो सुंदर हों। मैं जनेवा में था, जहाँ जनेवा सम्मेलन पेरिस में था, और विभिन्न स्थलों में जहाँ पर सम्मेलन हुए थे। मैंने संयुक्त राष्ट्र के भवन को देखा, और ओ ये सुंदर है, विशेषकर जनेवा में। और तब वहाँ वे, मैं विश्वास करता हूँ कि वे इन स्थानों को चुनते हैं ताकि वो आकर्षण उसमें कुछ है। यदि ये शांतिमय और आकर्षक है तो प्रतीत होता है कि ये मनुष्य के आत्मा पर प्रभाव डालता है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये सत्य है। बहुत बार मैं स्वयं पहाड़ पर सूर्यास्त को देखने के लिए चढ़ता हूँ या रोमांचित होता हूँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे सारे मतभेद समाप्त हो गए। एक स्थान, एक चुना हुआ स्थान जहाँ ये सम्मेलन होने चाहिए, और तब वहाँ पर ये निर्णय लिए जाने चाहिए। और तब दूसरा विचार जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये, सम्मेलन में जब तक अति आवश्यक ना हो ये सम्मेलन नहीं होते। ये कठिन समय में जब ये सम्मेलन होते हैं, चार बड़ी सभाओं के समय में ये सम्मेलन थे, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध लगभग हाथों से निकल रहा था। उन्हें एक साथ जमा होना ही था और अपनी सारी युद्ध योजना लगानी थी और कुछ करना था। श्री चर्चिल और रूजवेल्ट और दूसरे अपनी सारी समझों को एक साथ मिलाकर उसे खींचना चाहते थे कि मालूम करें कि क्या अच्छे से अच्छा क्या है, क्योंकि ये संकटकालीन क्षण था। ये वो समय था कि जबकि समस्त स्वतंत्र संसार भस्म हो सकता था और आज हिटलर संसार का तानाशाह होता, तब हम ये सभा आज नहीं कर सकते थे। इसलिए सम्मेलन हुए और इसी कारण वे इन्हें चुने हुए स्थानों में करते हैं और इसी कारण उन्हें ये करना होता है। और यदि और हम परामर्श के लिए बाध्य हैं, इस प्रकार वे मिलते हैं और उनके बड़े बड़े सम्मेलन हुए। मेरे मस्तिष्क में कोई संदेह नहीं और समय मुझे अनुमति नहीं देगा कि मेरी आवाज आगे बढ़ते हुए और उन कालों में से निकलते हुए जो महान सम्मेलन उन समयों में हुए, मैंने इस विषय में पढ़ा हुआ है, फ्राउन के दिनों और आदि आदि। परंतु इस संसार के तंत्र का महान सम्मेलन हो चुका और तब परमेश्वर ने कुछ सम्मेलन किए। तब परमेश्वर के विधान में एक समय आया, परमेश्वर की महान व्यवस्था में, जहां एक सम्मेलन होना ही था। और पहला वाला जिसका मैं इस पृथ्वी के लिए कह सकता हूं, वो अदन की वाटिका में था, जब परमेश्वर के दूत रोते हुए घर आए कि आपके बालक गिर गए, उसने पाप किया और उसने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। कुछ तो करना था। परमेश्वर की सृष्टि अनुग्रह से गिर गई और अपने परमेश्वर की उपस्थिति से सदा के लिए अलग हो गए और अपने बनाने वाले से। वो संकट की घड़ी थी। स्वर्ग के राजा ने कहा, जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। अपने पुत्र में विश्वास रखते हुए उसके पुत्र ने उसकी आज्ञा तोड़ दी। वहाँ कुछ तो करना ही था। वो उसकी अपनी सृष्टि थी, उसके अपने हाथों का कार्य था, ये उसके अपने हृदय का प्रेम था, उसकी आंख का तारा। कुछ तो किया जाना चाहिए, इसलिए सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। परमेश्वर ने अदन वाटिका में एक निश्चित पेड़ को चुना। जब उसने लहू से लथपथ भेड़ की खाल को झाड़ियों के पीछे की ओर फेंका, उसने आदम और हवा को बुलाया और वहाँ उसने एक सम्मेलन किया बातचीत की और इस भयानक चीज का समाधान निकाला जो उसके बालकों ने किया था। परमेश्वर का सम्मेलन। और वहाँ एक निर्णय लिया गया। सम्मेलन में सदा निर्णय लिया जाता है और परमेश्वर ने एक निर्णय लिया, क्योंकि उस हवा ने जब उसने उसे गवाहों के समक्ष पकड़ा, क्योंकि उसने संसार से जीवन लिया, उसे जगत में जीवन लाना था, और आदम को और सर्प को, और वास्तव में उस जाति का पिता होने के नाते सारी जाति जो उसके अधीन थी आदम के साथ गिर गई। तब मैं एक और सम्मेलन को स्मरण कर सकता हूँ, उस भागे हुए भविष्यद्वक्ता जो अपने निर्णयों में निर्बल हो गया था और उसने सोचा कार्य बहुत बड़ा है, और वो भाग गया और एक स्त्री ब्याह ली और वापस जंगल में चला गया और वहाँ 40 वर्ष रहा। एक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का अभिषेक, एक बड़े प्राधिकार के साथ एक भविष्यद्वक्ता होकर संसार में जन्मा, परंतु फिर भी अपनी गलती के भय से जो उसने की थी, बजाय परमेश्वर के निर्देश का पालन करने के अपने हाथों में ले लिया, उसने एक मनुष्य को मार डाला। और धमकी और फिरौन के भय से वो जंगल को भाग गया और वहाँ 40 वर्षों तक था।
slaves of Egypt, the task was so great.
और मिस्र के गुलाम कार्य इतना महान था, उनकी पीठें इतनी जख्मी थीं, उनके हृदय इतने टूट गए थे, जब तक कि उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के सम्मुख नहीं पहुंच गई, तब उसे परामर्श के लिए बाध्य किया गया। परामर्श के लिए बाध्य करने का एक मार्ग है, आप इसे अपने जीवन में कर सकते हैं, एक बल परीक्षा। लोगों का बोझ और चिल्लाहट इतनी भारी थी, यहाँ तक कि परमेश्वर को एक सम्मेलन के लिए बाध्य होना पड़ा। जब परमेश्वर निर्णय लेता है, उसे उसी प्रकार होना होता है। इसलिए वो संसार के रचने से पहले कर चुका, अपने लोगों को छुड़ाने के उद्देश्य से मनुष्य को मेमने की जीवन की पुस्तक में रख चुका है। सारी बातें परमेश्वर द्वारा पूर्व नियोजित हैं। उस मनुष्य का नाम मूसा था, उसका दास। इसलिए सृष्टि के रचने से पहले मूसा लोगों को छुड़ाने के लिए चुना हुआ था, और मूसा ने परमेश्वर को असफल कर दिया। इससे हमें परामर्श और साहस मिलता है। हम जिन्होंने परमेश्वर को असफल कर दिया, हमारे पास अब भी आशाएं हैं। हमने उसे कलीसियाई रूप में असफल कर दिया है, हमने लोगों के समान उसे असफल कर दिया, परंतु हम एक सम्मेलन करें इस मामले पर, उससे बातें करें, देखें वो हमें क्या बताता है, देखें इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। और परमेश्वर का जन असफल हो गया था, और परमेश्वर को एक सम्मेलन बुलाना पड़ा। वो किसी और का प्रयोग नहीं कर सकता था, उसने मूसा को चुना था। इसलिए वो एक सुनसान स्थान में चला जाता है, कहीं सीने के आसपास रेगिस्तान में, और उसने एक पर्वत की चोटी और झाड़ी को चुना, एक निश्चित स्थान। उसने सोचा, मैं मूसा को यहाँ पर लाऊंगा, ये स्थान अच्छा रहेगा, उसकी भेड़ों से अलग, अपनी पत्नी से अलग, अपने बालकों से अलग, सब लोगों से अलग, और मैं उसके साथ सम्मेलन करूंगा। वहाँ जब वो भविष्यद्वक्ता से बोला, तब वे अपने उद्देश्य पर पहुँच गए। मैंने अपने लोगों का चिल्लाना सुना है, इसलिए मूसा मैंने तुझे बुलाया है। मैंने वहाँ नीचे अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है, और मुझे चेत आता है कि मैंने एक प्रतिज्ञा की है जो मुझे पूरी करनी है। अब मैं तुझे वहाँ भेजता हूँ। मूसा के वचनों को परमेश्वर का समर्थन था, वो एक मनुष्य था। उसने कहा, परंतु मैं कौन हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। और तब इस सम्मेलन में परमेश्वर ने मूसा से कहा, किसने मनुष्य के मुख को बनाया, किसने मनुष्य को जुबान दी कि बातें करे, किसने बहरा बनाया, किसने गूंगा बनाया। और मूसा ने फिर भी शिकायत की, वो परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता हूँ। और उसने कहा, मूसा यदि तू ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर हूँ, अपनी छड़ी को भूमि पर डाल, और वो सांप में बदल गई। तब उसने कहा, अपना हाथ अपनी छाती पर रख और उसे बाहर निकाल, और वो कोढ़ी था। और जब उसने उसे फिर से डाला और बाहर निकाला, वो चंगा हो गया था। कहा, तू जानता है कि मैं कौन हूँ मूसा, मैं परमेश्वर हूँ जो आश्चर्य कर्म करता है, मैं परमेश्वर हूँ जो बीमारों को और दुखियों को चंगा करता है, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। मूसा ने कहा, मैं तेरी महिमा को देखता हूँ। एक और बात मैं जानना चाहता हूँ इससे पहले कि ये सम्मेलन समाप्त हो, मैं फिरौन को क्या बताऊँ कि किसने मुझे भेजा है। उसने कहा, उसे बताना कि मैं हूँ ने तुझे भेजा है, ना कि मैं था या मैं होऊंगा, परंतु सदा उपस्थित, कल आज और सर्वदा एक सा है। हूँ। अब वर्तमान काल है, ये भविष्य को और भूतकाल को वर्तमान उपस्थित करता है। मैं हूँ, मैं हूँ ने तुझे भेजा है। मूसा ने अपनी आज्ञा प्राप्त की और मिस्र को चला गया। बाहर आते हुए बालकों को ला रहा था। एक समय आया जब वे घिर गए थे। एक लोग, एक बुलाए गए लोग, बाकी संसार से अलग किए गए लोग, इसराइली परमेश्वर के लोग थे जब तक वे मिस्र में थे। जब एक बार वे मिस्र से बाहर हुए तो वे परमेश्वर की कलीसिया थे। शब्द बाहर बुलाए हुए या कलीसिया का अर्थ बुलाए गए हैं। इसलिए वे संसार में से बाहर बुलाए हुए थे और वे कलीसिया हैं। इसलिए यही है आज प्रातः, वे जो संसार में से बुलाए गए हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि उन पर कौन से नामधारी कलीसिया का नाम लगा है। यदि वे बुलाए गए हैं और परमेश्वर के लिए अलग किए हुए हैं और वे इस महान कलीसिया के सदस्य हैं, इसलिए इन लोगों ने मेमने के लहू के चढ़ाने के द्वारा स्वयं को अलग किया और अपने दरवाजे की अलंगों पर लहू लगाने के द्वारा और वो जूफा के द्वारा लगाया गया। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ कुछ ध्यान दें। ये बहुत ही आकर्षित करने वाली बात है। मूसा ने आज्ञा दी कि वे जूफा लें और उसे मेमने के लहू में डुबाएं और इसे दरवाजे पर पोतें। लहू सही में मसीह के लहू को दर्शाता है। जूफा साधारण घास थी। आप इसे कहीं भी पा सकते हैं। केवल मुट्ठी भर घास लें। ये दर्शाता है कि लहू लगाना बहुत ही सरल है। घास विश्वास को दर्शाती है। केवल परमेश्वर में विश्वास। आपको कहीं जाना नहीं है। केवल परमेश्वर का विश्वास लें और लहू को अपने हृदय पर लगाएं। कहिए, मैं संसार की वस्तुओं से अलग हो गया हूँ क्योंकि विश्वास के द्वारा मैं अपने मामले में आज प्रातः लहू को लगाता हूँ। मैं चंगा हो जाऊंगा क्योंकि मैंने लहू को अपने हृदय की चौखट पर लगाया है। मैं कभी भी संदेह को इसके विरुद्ध उत्पन्न नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं स्वयं को यीशु के लहू के लगाने के द्वारा सुरक्षित करूंगा। विश्वास के द्वारा मेरा जूफा अपने दरवाजे पर और कोई शत्रु अंदर नहीं आएगा। अब मैं परमेश्वर के वचन पर कभी भी अविश्वास नहीं करूंगा। ये इतना ही सरल है। अलग होने के पश्चात वे अपने मार्ग पर थे और एक बुलाए गए लोग और वे लाल सागर पर आए और उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ा। वे पार नहीं जा सके। महान सेनापति यहोशू ने अपने हाथ को उठाकर और तुरही फूंकी, रुको, बढ़ने से रुको, यहाँ हमारे सामने रुकावट है। हमारे दोनों ओर पहाड़ हैं, हम यहाँ घाटी में हैं, और हमें और वो कलीसिया जब कभी रुकी, ये जब शैतान ने कब्जा किया। निरंतर आगे बढ़ना है और जल्दी जल्दी सय्योन की ओर बढ़ना है। जीवित परमेश्वर की कलीसिया को कभी भी रुक जाने का दोषी मत होने दो। इसलिए वे रुक गए और बोले, यहाँ क्या मामला है। और जैसे ही वे रुके और अपने तंबू गाड़े और थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लगे, उन्होंने रथों के पहियों की गड़गड़ाहट सुनी और उनके बचने का केवल एक ही मार्ग था कि वापस जाएं। और यहाँ फिरौन की सेना आती है कि उनके रास्ते बंद कर दे या पार जाने का मार्ग। आप सिपाहियों युद्ध नीतियों को जानते हैं, कैसे वे उन्हें घेर लेते हैं। वहाँ उनके सामने लाल सागर था, संभवतः 2 या 3 मील चौड़ा। इधर ऊंचे ऊंचे पर्वत, वे उन पर नहीं चढ़ सकते थे। वहाँ वे बिखरी हुई भेड़ों के समान हर तीरंदाज के निशाने पर होंगे। और उनके पीछे, क्योंकि वे रोक लिए गए थे, शत्रु आ गया। ये दर्शाता है मित्रों कि आज भी प्रतिज्ञा की देश की ओर बढ़ते हुए शत्रु हमारे पीछे एक दो छलांग लगाता है।
this revival. This cannot
हम इस बेदारी में नहीं रुक सकते. ये रुकने का स्थान नहीं कहला सकता. बस बढ़ते जाएं. पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके साथ है. परसों रात्रि, ये कल रात्रि, अब निरंतर उसमें बढ़ते जाएं. बिल्कुल ना रुकें, क्योंकि शत्रु ठीक पीछे आपके समीप है. जैसे ही रुकने की पुकार होती है और फिरौन की सेना दिख रही थी, थोड़ी ही दूर पर आ रही है, पहियों की गड़गड़ाहट और उड़ती हुई धूल और सिपाहियों की चिल्लाहट, क्या ही समय है. ये लोगों को उन्मत्त कर देता है. परंतु उनके बीच में एक था जो जानता था कि कोई कारण नहीं है कि अशांत हुआ जाए. इसका पहले ही परामर्श हो गया था. वो जानता था कि परमेश्वर को पकड़े रहने के लिए उसने क्या लिया है. इसलिए ऊपर हम कहेंगे, ऊपर पहाड़ पर मूसा ने स्वयं को बाकी इसराइलियों के बालकों से एक निश्चित चट्टान के पीछे छिपा लिया और वहां उसने एक परामर्श किया. प्रभु, मैं यहां तक आ गया हूं, परंतु एक रुकावट ने हमें रोक लिया है. हमें यहां पर रुकना पड़ा. जैसे कि यहां हमारा भाई पहिए वाली कुर्सी पर है. जैसे कि संभव है कि आप यहां कैंसर के साथ बैठे हों, या हृदय रोग के साथ, या कुछ ऐसा जो कि आप जानते हो कि मरने वाले हैं. शत्रु ने आपको रोक दिया. वो आपको एक ठहराव पर ले आया. हो सकता है इससे पहले शत्रु आपके ऊपर कब्जा करे, आप पहले ही रुक गए हों. हो सकता है आपके जीवन में कोई कारण हो कि आप रुक गए. ये जो भी है, आपके पास अभी भी विशेषाधिकार है कि आप परामर्श करें. हम इस पर उससे बात करें. हम इस विषय में कुछ करें. कोई मतलब नहीं कि शैतान क्या है. हमारे परमेश्वर के लिए वो कभी भी बहुत महान नहीं है. हमें एक परामर्श की आवश्यकता है. इसलिए मूसा ऊपर चला गया, हम कहेंगे कि एक निश्चित स्थान के पीछे, और परमेश्वर के साथ परामर्श किया. वो नहीं जान पाया कि क्या करे. हो सकता है कि आप ना जानते हो कि क्या करें. हो सकता है आप पापी हों और बहुत सारे पाप किए हों. हो सकता है आपने इतना धूम्रपान किया हो कि और नहीं कर सकते और इसे छोड़ नहीं सकते. हो सकता है इतना मद्यपान किया हो कि और नहीं कर सकते और आप इसे छोड़ नहीं सकते. हो सकता है आप ऐसे स्थान पर आ गए हों जहां आप पाप और कामुकता से भरे हों, यहां तक कि आप प्रत्येक स्त्री को देखते हैं गलत हों. या हो सकता है आपने यहां तक कि अपने प्राकृतिक उद्गमों को भी दूषित कर लिया हो. हो सकता है कि आप घेराव में आ गए हों. मैं चिंता नहीं करता कि आप कहां पर हैं. परमेश्वर अब भी आपके पास परामर्श हेतु आने के लिए तैयार है और आपसे इस विषय पर बात करें. हो सकता है आपने अपना घर तोड़ लिया हो. हो सकता है आपने अपना पति छोड़ दिया हो या अपनी पत्नी छोड़ दी हो. हो सकता है आप अपने बालकों को छोड़कर भाग गए हो. इस जीवन में बहुत सी बातें हो सकती हैं जिसमें शत्रु ने आपको फंसा लिया हो. मेरे भाई बहन, स्मरण रखिए, आपके पास अब भी अधिकार है कि परमेश्वर के साथ परामर्श करें. जी हाँ श्रीमान, उससे बातचीत कीजिए. वो संकट के समय उपस्थित सहायता है. तब हम देखते हैं मूसा ने परामर्श किया और हो सकता है कि विचार विमर्श ये था, ओ इसराइल के महान मार्गदर्शक, मैंने ये सब तेरे आज्ञा अनुसार किया है. मैंने इन लोगों की अगुवाई जैसा तूने मुझे करने को कहा की है. मैंने लोगों को लहू से ढांक दिया है. मैंने स्वर्ग से विपत्तियों को बुलाया. जो भी आपने करने को कहा मैंने सब किया है. और यहाँ पर हम घिर गए हैं. प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा ये परामर्श आपके साथ होना चाहिए. संभव है चट्टान की चोटी पर खड़े हुए या चट्टान की दरार के पास खड़े हुए मूसा इस संकट की घड़ी में निश्चित चुने हुए स्थान में प्रार्थना कर रहा था. कुछ तो करना ही था, या फिर वे रथों के पहियों तले कुचल देंगे. वे हर छोटे इब्रानी बालक को धकेलते हुए और प्रत्येक छोटे छोटे बालकों को कूदते हुए उनके सर चट्टान पर मारते हुए निकल जाएंगे. और उनकी माताओं को बलात्कार कर काट दिया जाएगा और उनके पिताओं का वध कर दिया जाएगा। वहाँ संकट की घड़ी थी। हो सकता है उसी प्रकार की संकट की घड़ी हो सकता है, वैसे ही नहीं परंतु हो सकता है कि कैंसर ने आपको पकड़ रखा हो, हो सकता है कि कोई और रोग, हो सकता है पाप ने आपको जकड़ रखा हो और ये आपको शैतान के नरक में नष्ट करने जा रहा हो, एक अलगाव परमेश्वर से। जल्द ही एक परामर्श सभा करें। और जब ये सम्मेलन हुआ तो परमेश्वर चट्टान पर मूसा के संग खड़ा हुआ और उसने कहा, मूसा वापस बस्ती में जा, वहीं वापस जा जहाँ से तूने आरंभ किया था। मैं परमेश्वर हूँ। वहाँ जाकर और लोगों से कह कि आगे बढ़ें। जब समय आएगा तो मैं आगे बढ़ने के लिए मार्ग बनाऊंगा। मैं मार्ग बनाने वाला परमेश्वर हूँ। मूसा परामर्श सभा समाप्त हो जाने के पश्चात और परमेश्वर की उपस्थिति से आगे बढ़े कि आज्ञा को लेकर निकल नीचे गया और कहा, इज़राइल तू ना डर, शांत रहे आज और अपने परमेश्वर की सामर्थ को देख। समुद्र की ओर जा, आज्ञा से इधर उधर ना हो। आज्ञा है कि आगे बढ़। प्रतिज्ञा का देश हमारा है। ये शत्रु हमारे मार्ग में है, इसने हमें अलग कर दिया है, परंतु परमेश्वर ने कहा है आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ। आज कलीसिया के साथ यही मामला है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है और वो आपको वरदान के बाद वरदान देना चाहता है और सामर्थ के बाद सामर्थ, अनुग्रह के बाद अनुग्रह, परंतु तुमने स्वयं को संगठित कर लिया है। मैं और आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि कलीसिया मुझे नहीं करने देगी, समझे। परमेश्वर में कोई ठहरने का स्थान नहीं है, वर्गीकरण का कोई स्थान नहीं है, किसी निश्चित स्तर का कोई स्थान नहीं है। इसकी बात यह है, आगे बढ़ो, परमेश्वर का वचन बोलो और आगे बढ़ो, केवल बढ़ते जाओ, निरंतर बढ़ते जाओ। परमेश्वर कहता है ये ठीक है, ये ठीक है, तुम्हें तुम्हारा प्राधिकार मिला है। यदि वे कहते हैं ठीक है, मैं अपनी कलीसिया में गया हूँ और उन्होंने मुझे बताया है कि मुझे उस वाले आराधनालय में नहीं जाना चाहिए, अब मैं शंका में पड़ गया हूँ कि मुझे पवित्र आत्मा लेना चाहिए कि नहीं। प्रतिज्ञा आपकी है, ये आपके और आपके बालकों के लिए है और उनके लिए जो दूर दूर हैं, जितनों को भी हमारा प्रभु परमेश्वर बुलाएगा। क्या परमेश्वर का वचन बोलो। परमेश्वर ने इसे ऐसा कहा है, आगे बढ़ो। देखिए शत्रु तितर बितर होता है, देखिए लाल सागर खुलता है। परामर्श कीजिए, आगे बढ़िए, निश्चय ही वो खुलेगा। परमेश्वर ही बच निकलने का मार्ग है, उसी ने मार्ग बनाया है सीधा सीधा प्रतिज्ञा के देश को। जो कुछ भी उसके मार्ग में आड़े आता है वो उसे मार्ग से हटा देता है। यदि कोई चीज आपके मार्ग में आए तो परमेश्वर के साथ परामर्श करें, इस विषय में उससे बातचीत करें और आगे बढ़ें। परमेश्वर यहाँ यशाया से यही कह रहा था, ओ तू पाप से भरा है, तेरे पाप लाल रंग के से हैं, तू क्यों नहीं आता और हम आपस में वाद विवाद करें, क्यों नहीं आता और इस पर मुझसे बात कर, मेरा अनुग्रह बहुत है। लाल सागर का सम्मेलन, बहुत वर्षों पहले एक और सम्मेलन हुआ था, मैं उसके विषय में कुछ क्षणों में बोलना चाहता हूँ। ये बड़े दिन का सा समय था जिसमें अब हम प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वहाँ बड़ा दिन हो या नहीं, परंतु वहाँ स्वर्ग में एक सम्मेलन हो गया कि छुटकारे की क्या योजना होगी और ये परमेश्वर के द्वारा निर्णय लिया गया कि वो मनुष्य बनेगा, कि वो नीचे आएगा और अपना श्राप स्वयं अपने ऊपर लेगा। उसके लिए ये उचित नहीं है कि एक स्वर्गदूत को भेजे, ये उसके लिए उचित नहीं होगा कि किसी और व्यक्ति को भेजे। यहाँ तक कि यदि उसके पास लड़का होता तो ये उसके लिए उचित नहीं होता कि अपने लड़के को भेजे। ये मेरे लिए उचित नहीं होगा कि जोसेफ मेरे न्याय के कारण पीड़ित हो, मैं ऐसा करने में न्यायी नहीं हो सकता हूँ। यदि मैंने अपना निर्णय ले लिया है, उसे वापस लेना चाहता हूँ, तो केवल एक ही चीज है जो मैं कर सकता हूँ कि उसके लिए मैं स्वयं को ही पीड़ित करूँ। यही चिन्ह है, यही मृत्यु है जिसने शैतान के ऊपर वार किया। अब मेरे कैथोलिक भाइयों और मेरे बहुत से प्रोटेस्टेंट भाइयों, मैं आपको आघात नहीं पहुंचा रहा हूं, परंतु जब आप यीशु को परमेश्वर से थोड़ा छोटा परमेश्वर बनाने का यत्न करते हैं, उसे छोटा परमेश्वर बनाते हैं, आप उसका पैर काट देते हैं और परमेश्वर की अध्यक्षता में उसे थोड़ा छोटा परमेश्वर कर देते हैं। आप इतने गलत हैं। यीशु मनुष्य था, उसने स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहा। ये शैतान के लिए मृत्यु का एक झटका था। शैतान ऊंचा है, अपने लिए मिकाइल से अधिक सुंदर राज्य बनाया। केन उसका पुत्र एक अच्छी वेदी बनाना चाहता था उन सब फलों आदि से। परमेश्वर इस प्रकार की सुंदरता में नहीं रहता, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु को मारने के लिए पाप को फूंका। देखिए वो कैसे आता है, उसने आने के लिए कैसे चुनाव किया, स्वर्ग में एक सम्मेलन हुआ। आप कैसे नीचे जा रहे हैं पिता, आप कैसे करने जा रहे हैं? स्वर्गदूतों ने कहा, मैं उनमें से एक होने जा रहा हूँ। मेरे छुटकारे का ये नियम है एक नजदीकी संबंधी, और मुझे स्वयं को मनुष्य बनना पड़ेगा। इसी प्रहार ने शैतान को गिरा दिया। जन्म वो सराफीमों के साथ नीचे आ सकता था, वो सोने की सीढ़ी से होता हुआ नीचे आ सकता था, वहाँ स्वर्ग में भजन गाए जा सकते थे और वो चलता हुआ पृथ्वी पर आ सकता था और हर चीज को निकाल देता। परंतु जब उसने परामर्श किया तो उसने निर्णय लिया कि बालक के समान आएगा। यशायाह 9:6 में हम इसे पाते हैं, हमारे लिए एक बालक जन्मा, एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और वो अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार कहलाएगा, वो सामर्थी परमेश्वर, अनंतता का पिता, और उसके राज्य का कभी भी अंत ना होगा। ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा कि एक बालक, ना कि एक परमेश्वर, एक बालक। देखिए वो कहाँ जन्मा था। इसका निर्णय तो सम्मेलन में ही होना था कि वो कहाँ जन्मेगा, कि ये निश्चित हो कि वो मनुष्य था। वो चरनी में जन्मा। बजाय इसके कि सुंदर महल कि उसके रक्षक लाएं, बजाय स्वर्गदूतों के संरक्षण में, बजाय सरापों के अवगमन के मध्य स्वर्ग के शान में, उसने स्वयं को चरनी में रखा, पशुओं के गोबर पर संसार की गर्द और गंदगी में आने को चुना। वो मनुष्य था, वो परमेश्वर से कम नहीं था, वो एक मनुष्य था। हमारे समान जन्मा उस गंद में जो स्त्री के गर्भ से आता है, परमेश्वर नहीं, एक मनुष्य। वो कुछ नहीं था और कोई आश्चर्य नहीं, महानतम पुत्र। आप सभाओं में हृदय के भेद को जानने का चिन्ह देखते हैं, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति। आप उसके चिन्हों को हर जगह देखते हैं। परंतु मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कह दूं, इतना प्रभावित करने वाला चिन्ह कभी नहीं हुआ कि स्वर्गदूतों ने चरवाहों को बताया कि तुम उसे चरनी में पशुओं के कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। और देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या है, यही है। ये आज मुझे चौंका देता है, क्यों क्या ये बेदारी इस नगर में आ सकती है, उस महान विशेष सुसमाचार सुनाने वाले की, और महान ऊपर और ऊपर जाते हैं, शहर के मेयर और सब ऊंचे ऊंचे या अच्छे वस्त्र पहने हुए, और निर्धनों को नीची दृष्टि से देखा गया। और आप कुछ सेवकों के विषय में बात करते हैं जिनके पास कुछ बड़ी बड़ी शिक्षा और जो बड़े प्रभावित शब्द बोल सकते हैं, जो कि आपकी समझ को रिझा लेते हैं, और उन बड़े बड़े शब्दों से जो कि गरीब कभी नहीं समझ सकते, और आप सब उसे महान कहते हैं। क्या आप नहीं देख सकते कि परमेश्वर नम्रता में है? ये एक चिन्ह होगा, बालक पशुओं पर डालने वाले कपड़े में लिपटा हुआ होगा और चरनी में रखा होगा उस गोबर के ढेर पर जो पशुओं और भेड़ों का है। ओ प्रभु, ये चिन्ह है, ये आपके लिए एक चिन्ह होगा कि आप बालक को वहाँ पाओगे। बहुत सी बार लोग सोचते हैं छोटे से पुराने आराधनालय में कुछ प्रचारक जो मुश्किल से अपना कह गए जानते हैं, गैंगबाज, अवैध शराब का धंधा करने वाले और सब कुछ परिवर्तित हो गए, कोई शिक्षा नहीं और उनकी दक्षिणी भावों का प्रयोग किया जैसे कि उसका है कि नहीं और ले जाना ढोना और लिया। आप इससे कभी भी परमेश्वर को नहीं पाएंगे, परंतु आप उसे यहाँ पशु के ऊपर डालने वाले कपड़े में लिपटा हुआ पाएंगे। दीनता, आप सोचते हैं कि ये किसी महान विधि से आता है। यदि आप परमेश्वर के साथ अपना वास्तविक परामर्श करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोगों को लीजिए, तब इस पर बात करें। आप परमेश्वर के कार्य को देख सकते हैं कि कैसे उसने किसी मूर्त, किसी महान कलाकार और किसी चीज को नहीं लिया और उसे बुद्धिमानी वाला भाषण दिया हो, परंतु उसने ऐसा कुछ लिया जो कुछ नहीं था, वैसे ही आया जैसे उसने पहले किया था। अधिक समय नहीं हुआ, किसी ने कहा, यदि ये विचारों का परखना और ये चंगाई और आदि आदि परमेश्वर का था, तो ये कैथोलिक पुरोहित तंत्र के पास होता, तो फिर यहूदी पुरोहित तंत्र के पास क्यों नहीं था? वो महल में नहीं जन्मा, वो चरनी में जन्मा। उसके पास कढ़ाई किया हुआ वस्त्र पहनने के लिए नहीं था, परंतु हल में जुते हुए बैल का उतरा हुआ चिथड़ा गोबर की खाद के ढेर पर पड़ा था। परमेश्वर का पुत्र, मंदिर जिसमें परमेश्वर ने वास किया, इसी प्रकार से उसने आने का निर्णय लिया। और हमें गोल कॉलर और पीछे से खुला हुआ कोट चाहिए और बड़े शानदार आराधनालय और सुनहरी चोटियाँ। ये एक चिन्ह होगा, आपको वो पशुओं वाले वस्त्र में लिपटा हुआ मिलेगा और चरनी में पड़ा होगा। ये आपके लिए चिन्ह होगा। परमेश्वर दीनता में वास करता है, धूमधाम में नहीं। ये सदा से शैतान का विचार रहा है। परमेश्वर दीनता में आता है, ये एक चिन्ह होगा। छोटा परमेश्वर नहीं, परंतु एक मनुष्य, एक मनुष्य। जब वो बालक था तो बालक के समान रोया, वो लड़के के समान गलियों में खेला। जब वो लड़का था, उसने यूसुफ के साथ बड़ई खाने में काम किया जैसे कि एक व्यक्ति कार्य पर होता है। जब वो भूखा था तो उसने खाना खाया, जब उसे गर्मी लगी तो उसे पसीना आया, जब वो दुखी था तो वो रोया। वो एक मनुष्य था। ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा, परमेश्वर नम्रता में तुम्हारे मध्य में वास करेगा, न कि महान बड़ा तरस वाला व्यक्ति, परंतु एक छोटा साधारण मनुष्य बिना किसी भूमिका के साथ, एक चिन्ह। ठीक वही ये शैतान के लिए मृत्यु का प्रहार है। ये हर नामधारी और धूमधाम के लिए मृत्यु प्रहार है और सारे धूमधाम और इस संसार की महिमा के लिए। ये मृत्यु प्रहार है कि स्वर्ग के परमेश्वर ने आने का ये मार्ग चुना। ये सम्मेलन में हुआ, इसका निर्णय तो होना ही था। यही मार्ग है जो उसने आने के लिए चुना। उसे उस मार्ग से नहीं आना था। वो स्वर्ग का परमेश्वर था, परंतु उसने एक बालक के समान बनकर आना चुना। उसने इस मार्ग से आना चुना। स्वर्ग की परामर्श सभा में यही हुआ। मैं और दूसरे दो सम्मेलन लूंगा, मैं इस वाले को लूंगा। एक समय था 35.5 वर्ष के सिद्ध जीवन के पश्चात जो उसने जिया, एक मनुष्य जो ऐसे ही जीना चाहता है जैसे मैं जीना चाहता हूँ, जितना कि आप जीना चाहते हैं। एक मनुष्य जिसके पास जीने के लिए कुछ था, भाइयों जिसे उसने प्रेम किया, लोग जिन्हें उसने प्रेम किया, सूर्यास्त जिसे उसने देखना पसंद किया। स्मरण रखें, यीशु मनुष्य था, परमेश्वर उसमें था। एक समय आया, आत्मा जो मेमने की अगुवाई कर रहा था, पंडुकी और मेमने के बीच परामर्श होना ही था, और इसे तय करने के लिए उन्होंने एक स्थान तैयार किया। उस रात्रि भोज के बाद, उस रात्रि उन्होंने एक सोते की नाले को पार किया, क्रेत या कहीं और उस सोते के पार चला गया और उस वाटिका जो गतसमनी कहलाती थी वहाँ चला गया। उन्हें परामर्श सभा करनी ही थी। परमेश्वर और मसीह ने इस पर बात करनी थी। मेमने और पंडुकी को एक साथ बैठना था। ये पंडुकी थी जिसने मेमने से बात करनी थी और ये मेमने की मृत्यु थी। अब जब वे उस चट्टान के पास बैठते हैं और सारे स्वर्गदूत स्वर्ग से आते हैं कि इस सम्मेलन को सुने, ओ वहाँ जब्राइल मिकाइल वुडवर्म वे हजारों उस चट्टान के चारों ओर बैठे थे। उसने अपने थके हुए चेलों से कहा, उनकी बड़ी बड़ी सभाएं हुई थी, थके हुए थे चाहे जैसे आप लोग आज प्रातः हैं। परंतु उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घंटा जागोगे, क्योंकि मुझे वहां जाकर परामर्श करना है, मुझे अकेले ही जाना है। और जब वे परामर्श की सभा आरंभ हो गई थी और मेमना नवयुवक एक सुंदर जीवन, ऐसा जीवन कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं होगा, एक ऐसा जीवन जो उस मेमने का था। परंतु अब पिता ने कहा, क्या तेरी इच्छा है, क्या तेरा प्रेम तेरे भाइयों के लिए पर्याप्त और महान है, क्या तेरा प्रेम इन पापियों के लिए, सड़े संसार के लिए जिसमें तूने जन्म लिया था, क्या तू इनसे इतना प्रेम करता है कि अपने जीवन से मूल्य चुकाए, क्या तू उनसे इतना प्रेम करता है कि उनका स्थान ले ले, कि उनके पापों को अपने ऊपर उस कठिन क्रूर संकट भरी मृत्यु में ले ले। कोई भी वैसी मृत्यु नहीं मर सकता, केवल वही। और उस परामर्श सभा में ऐसा निर्णय लिया गया, जब तक कि लहू उसके माथे पर से नहीं गिरने लगा। वो तनाव में था, संसार के पाप उसके ऊपर थे। और तब उसने पंडुकी के मुख की ओर देखा और कहा, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ओ क्या आज प्रातः वो निर्णय हम अपने हृदयों में ले सकते हैं? क्या आप अपने उस छोटे गंदे जीवन को भुगतान में दे सकते हैं? क्या आप उसकी मुख की ओर देखकर कहने के इच्छुक हैं और कहें, मेरी इच्छा नहीं, मैं शराबी हूँ परंतु मैं अब और नहीं पीऊंगा, मैं जुआरी हूँ मैं अब और नहीं पीऊंगा, मैं असभ्य हूँ और अब मैं उस प्रकार और न होऊंगा, मैं झूठा हूँ परंतु मैं आज इसे बंद कर दूंगा, मैं गलत व्यक्ति हूँ परंतु इस परामर्श सभा में आज प्रातः मैं तेरे मुख की ओर देखूंगा और अपने गुरु के समान ले लूंगा जो मेरे मार्ग को साफ करने के लिए मेरे लिए मरा। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। यदि मेरा घर इस मूल्य पर लगता है और यदि इस परामर्श सभा में इससे मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरी संगति, मेरी कलीसिया की सदस्यता जो कुछ भी हो दांव पर लगता हो, मैं इस प्रातः तो मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझ में रहे। मैंने इसके विषय में सुना है, मैं आपको अपने अंदर चाहता हूँ, मेरी नहीं आपकी, यही मेरा निर्णय है। परमेश्वर ने किसी ऊंची चोटी के स्थान पर नहीं बुलाया परंतु दीन छोटे से आराधनालय में जो गिरने को है, हमारी परामर्श सभा है। एक क्षण के लिए मैं एक और सम्मेलन के लिए बोलना चाहता हूँ, बहुत सो को सिखाया गया होगा। उसकी मृत्यु गाड़े जाने और जीवित हो उठने के पश्चात परामर्श सभा हुई, कुछ करना था। वे बुद्धि भरे विचारों के लोग थे, इसलिए वहाँ एक दूसरी महान परामर्श सभा तय हुई। हम ये जानते हैं पेंतेकुस्त के समान बाइबल में उन्हें परामर्श सभा करनी ही थी और कुछ करना था, क्योंकि यीशु ने कहा, अधिक प्रचार मत करो, अधिक अब मत गाओ, अब बाहर जाकर और सेवकाई मत करो, परंतु अब मैं तुम्हारे साथ परामर्श सभा करना चाहता हूँ। और इस सम्मेलन में मैं पवित्र आत्मा को लाने जा रहा हूँ, परंतु यरूशलेम नगर में जाओ और वहाँ तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं वापस ना आऊँ। मुझे स्वर्ग को जाना है कि उन्हें आनंदित होने दूँ, और मुझे महामहिमन के सिंहासन के पास जाना है, वो देह यीशु। परंतु मैं जा रहा हूँ, हम वहाँ पर परामर्श सभा करने जा रहे हैं, और परमेश्वर जो मुझ में वास करता है उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं फिर से वापस आ सकता हूँ और मैं तुम में होऊंगा, तुम्हारे साथ, तुम में, संसार के समाप्त हो जाने तक। जब तक ये सब पूरा ना हो जाए मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, और जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे। इसलिए वे नहीं जान पाए कि वे इसे कैसे करेंगे, इसलिए वे पेंतेकुस्त पर गए और 120 जने ऊपर वाली कोठरी में गए और द्वार बंद किए, और उन्होंने प्रतीक्षा की, हमारे साथ परेशानी है, यदि हम सभा को 10 मिनट में परमेश्वर के संग नहीं पाते तो हम थक जाते हैं और हमारे घुटने दुखते हैं, हम चले जाना चाहते हैं। यदि वो हमारी इच्छा के अनुसार उत्तर नहीं देता जो हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, तो हम उसके साथ विरुचि हो जाते हैं। ओ आओ हम आपस में वाद विवाद करें। ओ पेंतेकुस्त पर आए, मैं तुम्हारे साथ वाद विवाद करना चाहता हूँ। केवल वहाँ जाकर प्रतीक्षा करो। 10 दिन वे बैठे थे, खड़े थे, प्रार्थना और सब कुछ कर रहे थे, प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, और तब अचानक से परामर्श सभा का निष्कर्ष स्वर्ग से नीचे उतर आया, पवित्र आत्मा आंधी के शब्द के समान, और इसने पूरे घर को भर दिया जहां वो बैठे हुए थे। वे पवित्र आत्मा से भर गए थे और आगे बढ़कर उन्होंने वचन प्रचार किया। जब हमारा विश्व सम्मेलन हुआ, प्रायः उनके चुने हुए स्थान थे, और वे परामर्श सभा में क्या करते थे? वे मिली जुली शराबे पीते थे, वे सिगार और सिगरेट पीते थे, वे एक दूसरे से झूठ बोलते, धोखा देते और विश्व शांति की बातें करते। परंतु जब परमेश्वर सम्मेलन करता है तो ये उपवास, शुद्धता, प्रार्थना, आज्ञाओं को प्राप्त करना और आगे बढ़ना, ये परमेश्वर का सम्मेलन है। बढ़िया खाने नहीं परंतु उपवास, न कि अश्लीलता में जाना परंतु अलग, स्वयं को हर अधर्म से शुद्ध रखना। जब आप परमेश्वर के सन्मुख जाएं, स्वयं को विश्वास के द्वारा जूफा से लहू को अपने हृदय पर लगाना और परमेश्वर के सन्मुख उस सम्मेलन के लिए चलना। इस प्रकार के सम्मेलन जब आप परमेश्वर से मिलते हैं, तब परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, तब आप आगे बढ़े, वो आपके साथ जाता है। बहुत सारी परामर्श सभाएं हैं जिनके विषय में हम सोच सकते हैं, परंतु समय अनुमति नहीं देता। अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ, मार्टिन लूथर के दिनों में सुधार पर सम्मेलन हुआ। परमेश्वर ने मार्टिन लूथर को बुलाया कि जाकर न्याय और उचितता को प्रचार करो, और उसने ये किया। वेस्ली के दिनों में एक परामर्श सभा हुई इंग्लैंड में कि पवित्रता को प्रचार करे, और जैसा कि वेस्ली ने गवाही दी, मैंने उसका कोट पहना, उसका अंतिम कोट जो उसके पास था, एक कपड़ा, मैं उसके प्रचार मंच पर खड़ा हुआ, जहां से उसने प्रति प्रातः 5 बजे 1500 लोगों को प्रचार किया। उस कमरे में घुटने टेके और उसके जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसी कमरे में जहां वो मरा, वहां आत्मा मुझ पर था। मैंने सोचा, हाँ, वेस्ली सच्चा था। परमेश्वर के पवित्र सरदूतों और परमेश्वर ने परामर्श सभा की कि वो समय था कि पवित्रताई को प्रचार किया जाए, और उन्होंने वेस्ली को चुना, और वो इसके लिए सच्चा था। तब पेंतिकोस्त के समय पर ये पेंतिकोस्त को वापस फेर लाने का समय था। वहाँ स्वर्ग में परामर्श सभा हुई, क्या ये आत्मा की भरपूरी को उंडेलने का समय है? और वो उतरा और उन्होंने इसका प्रचार किया, और हमें ये मिला और पवित्र आत्मा प्राप्त किया। अब मैं विश्वास करता हूँ कि हम अब दूसरे सम्मेलन पर हैं, और वो परमेश्वर के पुत्र का आगमन। उसने अपने चेलों से कहा, मैं उस मिनट या घंटे को नहीं जानता, यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नहीं, परंतु किस दिन एक सम्मेलन होगा। दूसरे तरह से पिता ही उस घड़ी का निर्णय लेगा। मैं वापस आऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि सम्मेलन चल रहा है, निर्णय लिया जा रहा है। उसका आत्मा इस पृथ्वी पर इतने जोर से आ रहा है, यहाँ तक कि एक भक्त मंडली में खड़ा होगा और मस्तिष्क के विचारों को परखेगा। जैसा कि बाइबल ने कहा, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से अधिक तेज और अधिक सामर्थी है, गूदे गूदे को बार बार छेदता है और हृदय के विचारों को परख लेता है। जब फिलिपुस आया और परिवर्तित हुआ था और जाकर नतेल को बुला कर लाया, और नतेल यहूदियों को यीशु के सामने लाया, और वो उसे उसके विषय में बता रहा था, बताया, भाई नतेल, क्यों अभी कुछ दिनों पहले एक अनपढ़ मछुआरा उसके पास आया और वो जानता था। उसने उसका नाम पुकारा और उसे बताया कि वो कौन था। क्या तुम नहीं जानते वो मसीह जिसके लिए हमारे भविष्यद्वक्ता ने कहा आएगा? क्या तुम अनुभव नहीं करते कि वो मसीह भविष्यद्वक्ता होना चाहिए, एक परमेश्वर भविष्यद्वक्ता? वो यही है, یہی ہے وہ۔ نتنیل کو کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا وشواس نہیں کرتا، میں سوئم جا کر دیکھوں گا، پرنتو جب وہ یشو کے سامنے پہنچا، یشو نے کہا دیکھو ایک اسرائیلی جس میں کوئی دوش نہیں ہے۔ اور جب اس نے یہ کیا، اس نے کہا تو مجھے کب سے جانتا ہے ربی؟ کہا اس سے پہلے کہ فلپ اس نے تجھے بلایا، جب تو پیڑ کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ اس نے کہا تو پرمیشور کا پتر ہے، تو اسرائیل کا راجا ہے۔ جب سامریا کی استری جس کے پانچ پتی تھے اس کے پاس آئی اور اس نے کہا، جب اس نے اپنا پانی لینا آرم کیا، اس نے اس یہودی کو بیٹھے دیکھا، اس نے کہا مجھے پانی پلا۔ دیکھیے، وہ ایک منشیہ کے سمان پیاسا تھا، وہ ایک منشیہ تھا، اپنی دیہ میں وہ ایک منشیہ تھا، آتما میں وہ پرمیشور تھا۔ پرمیشور نے مسیح میں واس کیا کہ سنسار کا سوئم سے میل ملاپ کیا۔ کہا مجھے پانی دے، اس نے کہا کیوں، یہ ریتی نہیں ہے۔ دوسرے شبدوں میں ہمارے مدھ میں الگاؤ ہے، مجھ سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اس نے کہا پرنتو یدی تو جانتی کہ تو کس سے بات کر رہی ہے۔ او مجھے آشچریہ ہے کہ آج پراتہ یدی ہم جانتے کہ اس کمرے میں کیا ہے، یدی ہم جانتے کہ اس کمرے میں سوئم پوتر آتما، وہ جو ہمارے لیے یا ہمارے ویرودھ میں نیائے کے دن گواہی دے گا، یہی اس کمرے میں ہے اور ہمارے وچاروں کو جانتا ہے۔ یدی تو کیول اتنا جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے بولتا ہے، تو مجھ سے پانی مانگتی۔ اس نے کہا کہ کنواں گہرا ہے، وہ اس سے تب تک باتیں کرتا رہا جب تک کہ اس کی آتما کو نہیں پکڑ لیا، اور اس نے کہا جا کر اپنے پتی کو یہاں بلا کر لا۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ کہا تو نے ٹھیک کہا، تیرے پانچ ہوئے اور وہ جس کے پاس تو ابھی رہ رہی ہے تیرا پتی نہیں ہے۔ اس نے کہا شریمان، مجھے پرتیت ہوتا ہے کہ تو بھوشیہ دکھتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو وہ ان چیزوں کو کرے گا، پرنتو تو کون ہے؟ یشو نے کہا میں وہی ہوں، او پربھو میں وہی ہوں جو تجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ ایک سادھارن منشیہ پانی مانگ رہا ہے، وہ سورگ سے کوئی مہا سندر سا دکھنے والا نہیں ہے، نہ ہی وہاں کوئی شویت سہاسن لگا ہے، پرنتو ایک منشیہ پینے کے لیے پانی مانگ رہا ہے کہ اپنی پیاس بجھائے۔ میں وہ ہوں جو تجھ سے بولتا ہوں۔ اور وہ نگر میں دوڑ گئی اور کہا آؤ دیکھو ایک منشیہ جس نے مجھے وہ ساری باتیں بتا دی جو میں نے کی، کیا یہ مسیح کا چنہ نہیں؟ کیا یہ وہی تو نہیں؟ اسی کی پرانے نیم کے بھوشیہ دکتاؤں کے دوارا بھوشیہ کی گئی ہے۔ کہا ایک دن ہوگا جب وہ لوگ دوسری طرح سے کیول کلیسیا کے سدسیہ ہوں گے اور آرادنالے جائیں گے، اور بہت ہی سندر اچھے لوگ اور ان کی سنستھائیں آدھی ہوں گی، اور یہ نراشا جنک دن ہوگا، نہ تو اندھیارا نہ ہی اجیالا، پرنتو سانج کے سمے میں اجیالا ہوگا۔ وہ بھوشیہ پوری ہو جانی چاہیے۔ آپ کو اسمرن ہے پچھلی راتری ہمارا سمیلن سورگ میں، پرمیشور سارے سردوتوں کو لے آیا چاروں اور کی پرامرش سبھا کرے کہ وہ کسے بھوشیہ کا وچن بنائے کہ گھٹت ہو، ایلیا کو نکال کر لائے، یعنی میرا ارتھ آہاب کو، کہ وہاں اسے مار دے۔ اب ایک پرامرش سبھا سورگ میں چل رہی ہے، سانج کے اجیالے یہاں پر ہیں، ایٹم بم اور چیزیں ہر ستھان پر لٹک رہی ہیں، اور ہم انت سمے میں ہیں۔ وشو سمیلنوں کا انت ہو گیا، پرمیشور کی پرامرش سبھا کا سمے آ رہا ہے۔ انیہ جاتیوں کے لیے یہ وچن پورے ہونے ہیں، جو کاریہ میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے۔ وہ سمے یہاں ہے، سمیلن ہو چکا ہے، آتما یہاں پر ہے۔ اب متر بند کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی آج پراتہ ایک پرامرش سبھا میں ہیں، آپ اور آپ کا مقدمہ بحث کے لیے تیار ہے، آپ کے بیماری کا مقدمہ بحث کے لیے انوگرہکاری پرمیشور کے سامنے تیار ہے، آپ کے پاپ کا مقدمہ انوگرہکاری پرمیشور کے سامنے تیار ہے، اور نشچت ہو جائیں کہ آپ اسے سویکار کرتے ہیں۔ کیونکہ میں آپ کو بتا دوں، میں انتم سمیلن پر بولنے کے لیے تیار ہوں جو کہ کبھی ہوگا، پرمیشور انوگرہکاری ہو۔ کیول ایک بات وہاں استھر رہے گی جو واپس ملا لے، نیائے ہے، اور آپ کیول ایک ہی بات سے واپس ملائے جائیں گے، وہ کہ آپ نے یشو مسیح کا لہو اپنی شمع کے لیے سویکار کیا ہو اور اس کے آتما کے دوارا بھر گئے ہوں۔ وہاں ایک سمیلن ہے جہاں ہر پرش ہر استری ملے گی، ہر بالک ملے گا۔ وہاں ایک ستھان ہے جو کہ سمیلن کے لیے چنا گیا ہے، जहां वो सम्मेलन होगा और वहां एक महान श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। परमेश्वर ने अपने महान भविष्यवक्ताओं को अनुमति दी है कि उसे देखें और कहा, पुस्तकें खोली गईं और दूसरी पुस्तक जो जीवन की पुस्तक है, हजारों हजार लाखों सेवक और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते हैं। तब ये लिखा गया था, यदि धर्मी ही कठिनता से बचेगा तो फिर पापी और अधर्मी कहाँ होंगे? उस सम्मेलन में आपकी क्या स्थिति होगी? आपने उन सबको पार कर लिया होगा अपने जीवन काल में। आज प्रातः आप इस द्वार से बाहर जा सकते हैं और इसे छोड़ सकते हैं, परंतु मेरे मित्र, आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आपको वहाँ होना ही है, क्योंकि मनुष्य के लिए एक बार मरना तय है, परंतु उसके पश्चात न्याय। वहाँ एक महान सम्मेलन होगा जहाँ पर हम सबको साथ खड़ा होना होगा, और हमें आज प्रातः की इस पृथ्वी के सम्मेलन का हिसाब देना होगा जो हमने आज प्रातः की है। यदि आप पापी हैं तो उसके अनुग्रह को स्वीकार कर लें जबकि हम प्रार्थना कर रहे हैं और अपने सिरों को झुकाए हुए हैं। इसके थोड़ा पहले की प्रार्थना करें और आप अपने झुके हुए सिरों के साथ, मुझे आश्चर्य है इस प्रातः इस सम्मेलन में बैठे हुए हैं, यदि पवित्र आत्मा ने आपसे नहीं कहा तुम दोषी हो, और हो सकता है आप कहें, पवित्र आत्मा आप देखिए ये इस प्रकार से है। यही मूसा ने लाल सागर के सम्मेलन में कहा, प्रभु ये इस प्रकार से है, मैं यहाँ तक आ गया हूँ परंतु मैं इसके आगे नहीं जा सकता, मेरे मार्ग में कुछ है। आपके मार्ग में कुछ हो सकता है, परंतु स्मरण रखें, परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा और इज़राइल के बालकों से कह और आगे बढ़। क्या आप चाहेंगे कि आपको प्रार्थना में स्मरण रखा जाए? क्या आप अपने हाथ को उठाएंगे और कहें कि भाई मुझे प्रार्थना में स्मरण रखें? परमेश्वर आपको आशीष दे। ओ सारे भवन में दर्जनों हाथ। स्वर्गीय पिता, इस टूटी हुई आवाज से, बल्कि छिन्न भिन्न हुई आवाज से, जो प्रचार करने से, परंतु जो भी हो, दूसरा उस महान पवित्र आत्मा ने लोगों को वो विचार दिया जो इसका अर्थ था। जब भविष्यवक्ता ने कहा अब आओ हम एक दूसरे से वाद विवाद करें, प्रभु ने कहा अब आइए हम जब ठीक यहाँ अपने स्थानों में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से परामर्श सभा करें। मैं तुम्हारे बराबर में बैठा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, परंतु प्रभु मैंने पाप किया है। पापी कहता है मैंने बहुत कुछ किया है, प्रभु मैं विश्वास नहीं करता कि आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। मैं एक शराबी हूँ, मैं एक वैश्य हूँ, ओ मैं एक बदनाम व्यक्ति हूँ, प्रभु मैं विश्वास नहीं करता कि मेरे लिए कोई अवसर है। तब हम उन सुंदर वचनों को वापस आते सुनते हैं, यद भी तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हों तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। चाहे वो अग्रवाणी लाल रंग के हों, बहुत से बालकों के जन्म लेने के पहले ही उनका जीवन समाप्त कर दिया, और वे बातें जो भयानक हैं, यद्यपि वे किरमिजी लाल रंग के हों तो वे मेमने के ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। क्या ही दया है! आओ हम वाद विवाद करें। अब परमेश्वर ये कहता है, प्रभु आइए हम ये परामर्श सभा करें, और आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथ उठा रखे हैं, जो ये दर्शाता है कि आप उनके पास बैठे हुए हैं, क्योंकि पवित्र वचन में ये लिखा हुआ है, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पहले पिता ही उसे ना खींच ले, और वो सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा, और मैं उनको अनंत जीवन दूंगा, अंतिम दिन उन्हें जिला उठा खड़ा करूंगा। प्रभु आप प्रदान करें प्रत्येक जिसने अपने हाथ को उठा रखा है, और वे जिन्होंने अपने हाथ नहीं उठाए हैं, जहां कहीं भी आपका व्यक्तिगत सम्मेलन इस भवन इस समय चल रहा है, लोगों के साथ होने दें कि वे तेरे क्षमा करने वाले अनुग्रह को स्वीकार करें और तेरे आत्मा से भर जाएं और तेरे लहू में धुल जाएं, और जीवन के अंत में आप ये कह सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा किया मेरे अच्छे विश्वसनीय दास, तू उस प्रातः 8 पेन स्ट्रीट पर विश्वास योग्य रहा। अब प्रभु के आनंद में भागी हो जो कि तेरे लिए संसार की उत्पत्ति से पहले तैयार किया गया था। प्रभु मेरे परमेश्वर और मेरे पिता, मैं इन्हें तुझे देता हूँ। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता। मैं तो केवल आपका प्रचारक हूँ और मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता। ये तेरे हैं, इनकी आवश्यकता के अनुसार इनके साथ व्यवहार कर पिता, उनके हृदय की आवश्यकताओं के अनुसार। हम इन्हें अनुमति यानी तुझे तेरे पुत्र के नाम यीशु मसीह में समर्पित करते हैं। आमीन। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो कि आराधनालय में मैं कभी लोगों को ये अनुमति नहीं देता कि लोगों को सामने वेदी पर खींच कर लाएं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। यदि परमेश्वर आपको नहीं लाता तो इससे किसी का भी भला नहीं होता। कोई मनुष्य नहीं आ सकता जब तक पिता ही उसे ना खींचे, और वे सब जिन्हें पिता आपको खींचता है, क्योंकि आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में है, और सब जो उसने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। चाहे आप अपने बैठने के स्थान में हैं, सामने वेदी पर, जहाँ कहीं भी आप हैं, आप आएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है, यीशु ने ऐसा ही कहा है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जिन्होंने अपने हाथों को उठा रखा है, अगला कदम जो आपको उठाना है, यदि आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है तो पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। ये डॉक्टर का नुस्खा है, डॉक्टर शमौन पत्रस, जिसके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजी थी और आपको बताया कि कैसे प्रवेश किया जाता है। पेंतेकुस्त के दिन उन्होंने कहा, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उसने कहा, तुम में से प्रत्येक प्रायश्चित करे जो कि आपने अभी किया है, तब अपने अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। लोगों को और संसार को दिखाने के लिए कि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने में, उसने आपके पापों को ले लिया। तब आप पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों और उनसे जो दूर दूर, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, उस आज्ञा का पालन करो। यदि ये इस आराधनालय में नहीं, उस आराधनालय में जहां आप आराधना के लिए कलीसिया में जाते हैं, ये जहां भी हो, अलग ना रहें। जल्द ही विश्वासियों की आत्मिक देह में आ जाएं। असेंबली ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड, पेंटिकॉस्टल वननेस, पेंटिकॉस्टल टूनेस, थ्रीनेस, ये जो भी हो जाएं, मैं चिंता नहीं करता कि आप कहां जाते हैं, परंतु जल्द ही उस कलीसिया में पहुंचें, अपनी संगति वहां रखें। यदि वे छोटी छोटी बातें सिखाते हैं, हो सकता है जो कि आप नहीं कहते, अच्छा भाई ब्रैनम इस प्रकार नहीं सिखाते, ठीक है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो भी है, यदि आपको पवित्र आत्मा मिला है तो बढ़ते जाएं, उनके साथ रहें, आगे बढ़ें। जो भी है, हम सब एक के पास आ रहे हैं। जब सुलेमान का मंदिर समस्त संसार से तराशा गया तो इसे सारे विश्व में तराशा गया, और विभिन्न अजीब से पत्थर और हर चीज, परंतु जब वे मिलने लगे तो वहाँ आरी या हथौड़े की आवाज नहीं थी। मंदिर को बनाने में 40 वर्ष लगे, परंतु उन्होंने कभी भी हथौड़े की एक आवाज भी नहीं सुनी या आरी की आवाज। वे बिल्कुल ठीक ठीक तराशे गए थे। ये सारी महान कलीसियाएं जिनके पास पवित्र आत्मा है, एक साथ अपने अपने सही बैठने के स्थान में एकत्र होकर उस दिन यीशु मसीह की देह में रैप्चर के लिए मिलेंगी। इसलिए वहीं जाएं जहां वे सुसमाचार में विश्वास करते हैं। अब मेरे मूल्यवान मित्रों, मैं नहीं जानता कि मैंने आप लोगों का इतना समय ले लिया है। मैं नहीं जानता कि मैं किस समय आया, वो 9:30 या 10 बजे या ऐसे ही कुछ था, 10 बजे, मैं नहीं कह सकता। क्या ये वास्तव में इतना लंबा, मैं इसका विश्वास करने नहीं पा रहा हूँ। हमारे पास बीमारों के प्रार्थना करने के लिए समय है, हमने उनसे ये प्रतिज्ञा की थी। अब जरा एक मिनट, यदि आप हमें केवल 15 मिनट दे सकें, बस मैं विश्वास करता हूँ तब तक 15 मिनट हूँ, इसलिए मैं अपनी घड़ी से केवल 15 मिनट लूंगा। सुनिए, वहाँ कुछ नहीं है। जब आप बीमार होते हैं तो पहले आपका कर्तव्य है कि डॉक्टर के पास जाएं। ये ठीक है, जो भी वो कर सकता है वो करता है। यदि वो और कुछ ना कर सके तो आपका अधिकार है कि आप बड़े विशेषज्ञ के पास जाएं। अब डॉक्टरों के विरोध में नहीं है। मेरे बहुत से बहुमूल्य प्रिय डॉक्टर मित्र हैं, जो मेरे खास हैं, भले मनुष्य जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और वे भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। ये ठीक बात है, वे रोगी को लेते हैं, वे उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। सही में बहुत से अच्छे डॉक्टर, मैं उनके नाम याद रखता हूँ। हो सकता है कि वे पवित्र आत्मा और चीजों से भरे हुए ना हो, परंतु वे भले मनुष्य हैं। वे कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैं उस मामले में कुछ नहीं कर सकता, यदि आप इसे ले सकते हैं। मैं कहता हूँ, उसे भेजो, मुझे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं उसे यीशु मसीह के हवाले कर दूंगा, उसे ये करने दो, समझे। इसलिए ये अच्छा है। परंतु देखिए, यदि कहीं भी कहीं चंगाई होती है तो वो मसीह है जो इसे करता है। डॉक्टर तो रुकावट को हटाता है, दांत को निकालिए या काटिए, अपेंडिक्स को बाहर निकालिए, कैंसर काट कर निकालिए, मस्से को काटिए या ऑपरेशन या कुछ ऐसा ही आप में विष डालता है कि जीवाणुओं को मारे। परंतु परमेश्वर को छोड़ कोई चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि फिर से घाव भरने के लिए सृष्टि होनी है और कोई दवाई सृष्टि नहीं करेगी। समझे, केवल एक ही सृष्टि करता है, वो परमेश्वर है। तब भजन संहिता 103 देखिए, सारा पवित्र वचन सच्चा है। मैं प्रभु हूँ जो तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता हूँ। जी हाँ, वो ये नहीं कहता कि इसमें डॉक्टर का भाग नहीं है, उसका है। यदि मैं अपना हाथ तोड़ लूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, जो ये जानता है कि उस हाथ को कैसे ठीक ठीक बैठाया जाए। परंतु वो उस हाथ को चंगा नहीं कर सकता, वो केवल उसे बैठा सकता है, हड्डी को वापस उसी स्थान में बैठाता है। और तब परमेश्वर कैल्शियम आदि देता है और पदार्थ को उत्पन्न करता है जो मेरे हाथ के अंदर है, जिससे वो फिर बन जाता है। परमेश्वर ही चंगा करने वाला है, समझे। अब इस सप्ताह हम प्रचार कर रहे थे यहूदियों के समय में उनकी रीति लोगों के लिए ये थी कि बीमार पर हाथ रखें। वे यही किया करते थे, हर चीज के लिए हाथों को रखते थे। ये यहूदियों की व्यवस्था थी, परंतु अन्य जातियों के साथ ऐसा कभी नहीं था। जब याइर की लड़की, एक यहूदी याजक, जब वो मर गई तो उसने यीशु से कहा, चलकर मेरी पुत्री पर हाथ रख दे और वो जीवित हो जाएगी, अपना हाथ उस पर रख। परंतु जब वो रोगी सुबेदार के पास गया, उसने कहा, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, जहाँ तू खड़ा है वहीं रहे और केवल वचन बोल दे। उसने उस अधिकार को जो यीशु के पास था पहचाना। उसने कहा, मैं एक पराधीन मनुष्य हूँ, मेरे पास भी। वो एक सुबेदार था, जिसका अर्थ, इसका अर्थ 100 मनुष्य उसके अधीन। उसने कहा, यदि मैं इस मनुष्य से कहूँ ये कर तो वो करता है, उस मनुष्य से वो कर तो वो करता है। उसने कहा, तेरे पास हर बीमारी के ऊपर अधिकार है, हर कष्ट, हर चीज, वे सब तेरी आज्ञा के अधीन है, तू महान अधिकारी है। ओह, मुझे ये पसंद है। उसने यहाँ तक कि यीशु के हृदय को छू लिया। और तब वो यहूदी लोगों की ओर घूमा और उसने कहा, मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। सरूफूनी स्त्री, एक अन्य जाति यूनानी, उसके पास आई और कहा, प्रभु, मेरा एक बालक यहाँ पड़ा हुआ है, प्रेत आत्मा उसे बहुत परेशान कर रहा है, शायद वो मिर्गी या कोई इसी प्रकार की मस्तिष्क अव्यवस्था थी। कहा कि वो बहुत दुर्दशा में है, क्या उसे चंगा करेंगे? और उसने उसके विश्वास को परखा। क्यों? उसने कहा, बालकों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं। उसे कुत्ता कहा, और उन दिनों में कुत्ता उनमें से था, जैसे सुअर के विषय में वहाँ की तुच्छ चीज थी। कहा, मेरा ये खाना कि बालकों की रोटी लेकर और तुम कुत्तों को दे दूं? उसने कहा, प्रभु, ये सत्य है। ओ, मुझे ये पसंद है, ये सत्य है। कहा, परंतु जो जानता है कि कुत्ते मेज के नीचे से बालकों के चूर चार को खाते हैं, इस बात ने उसे छू लिया। वो बोली, जैसे तूने उस दिन किया था, हैटी, सही बात। वो घूमा और बोला, इस बात के कारण जा, प्रेत आत्मा तेरे बालक को छोड़कर चली गई है। उसे वहाँ जाकर उसकी पुत्री पर हाथ नहीं रखने पड़े। पेंटिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, फिलिपुस सामरिया को गया, वे आधे यहूदी थे, इसलिए जब वो वहाँ पहुँचा, उसे उन पर हाथ रखने पड़े कि पवित्र आत्मा पाए। तब तक पवित्र आत्मा उनमें से किसी पर नहीं उतरा था, इसलिए उन्होंने पतरस को बुलवा भेजा। उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया था, इसलिए उन्होंने यरूशलेम से पतरस और यहुन्ना को बुलवा भेजा मुख्यालय से, और उन्होंने आकर उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तब पतरस कुरनेलियस के घर गया। देखिए, उसे उन पर हाथ रखना पड़ा। देखिए, प्रेरितों के काम 19, इफिसुस में यहूदियों का झुंड, उसे उन पर हाथ रखना पड़ा और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। परंतु जबकि वो कुरनेलियस के घर पर था, जब वो ये वचन बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा, कोई हाथ नहीं रखे गए। जब उन्होंने सत्य सुना, पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वे भूखे थे और इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या आज प्रातः आप ऐसी ही चंगाई के लिए भूखे हैं? तो फिर पवित्र आत्मा ही बोले। यदि यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है, आप विश्वास करते हैं? क्या उसने कहा कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे? उसने उन लोगों पर कैसे प्रकट किया कि वो उनका मसीह है, यहूदी मसीह? उसने यहूदियों के साथ इसे कैसे किया? उनके हृदय के गुप्त विचारों को बताकर उन्होंने इसे पहचान लिया, वो मसीह। कितने जानते हैं कि ये सत्य है? निश्चय ही। जब पतरस आया और उसने कहा तेरा नाम पतरस है और कहा या तेरा नाम शमौन है, तू पतरस कहलाएगा, तेरे पिता का नाम योना है, ये तय हो गया। वो जानता था कि ये मसीह था। जब फिलिपुस ने जाकर नतेल को खोजा उसने कहा तू एक भला ईमानदार व्यक्ति है। उसने कहा अब रब्बी तूने मुझे कब से जाना? कहा इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया जब तू पेड़ के तले था मैंने तुझे देखा, पहाड़ के उस ओर 15 मील एक दिन की यात्रा मैंने तुझे देखा। उसने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है, इसराइल का राजा है। वो सामरियों के पास गया, उसे उस ओर से होकर जाना ही था। क्यों? वो सामरियों के पास गया और वहाँ एक सामरी स्त्री थी और इसलिए उसने सोचा कि वो सामरियों को एक मसीह का चिन्ह देगा और उसने कहा जा अपने पति को बुलाकर यहाँ ला। उसने कहा मेरा कोई पति नहीं है। उसने कहा तूने ठीक कहा क्योंकि तू 5 कर चुकी है। उसने कहा श्रीमान, दूसरे शब्दों में इस प्रकार से हम मसीह के आने की राह देख रहे हैं और वो परमेश्वर भविष्यवक्ता होगा और हम जानते हैं जब वो आता है तो वो हमें ये बातें बता देगा, इसलिए तुझे भी इसी प्रकार का भविष्यवक्ता होना चाहिए। उसने कहा मैं मसीह हूँ, मैं वही हूँ जिसके विषय में तू बात कर रही है। उसने जल का घड़ा छोड़ दिया, एक वेश्या और निराश वो कैसी दशा में थी, और नगर को दौड़ गई और उन लोगों से कहा आओ देखो एक मनुष्य जिसने मुझे बताया कि मेरे हृदय में क्या है, क्या यही तो मसीह नहीं? क्या यही तो वो मसीह नहीं? उसने कभी भी ऐसा अन्य जाति के साथ नहीं किया, नहीं श्रीमान। ये उनका दिन था जब सांझ के उजियाले। अब यहूदी अपने देश में है कि संसार को वश में करें, एक समय उन्होंने किया, वे वापस आ रहे हैं। उस अंजीर के पेड़ को देखो जो अपनी कलियां निकाल रहा है। आप यहूदी पर ध्यान दें, वो जहां कहीं भी हो आप परमेश्वर के कैलेंडर को पाएंगे। वो कभी भी इसराइल को नहीं छोड़ेगा, परंतु इसराइल को अंधा होना था। मैं ये इन यहूदियों को आधार मानकर नहीं कह रहा हूं जो यहां पर बैठे हैं, परंतु इसराइल को अंधा होना ही था ताकि हमें अवसर मिले। उनसे प्रेम करता है, आप चिंता न करें, वे फिर से खिलेंगे। जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, जो अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, परंतु प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सब लौटा दूंगा। ये केवल एक अवधि के लिए खा लिया ताकि हमें भीतर लाया जा सके, हमारी आंखें खुली हुई हैं। अब ये क्या है, हमारा दिन समाप्त हो रहे हैं, यहूदी फिर एकत्र होना आरम्भ हो गए हैं जैसा कि परमेश्वर ने कहा, और सांझ के उजियाले चमक रहे हैं। किस पर? सांझ में उजियाला कहाँ चमकता है? पश्चिम की ओर। पूर्व में ये यहूदियों पर चमकता है, पूर्वी लोग आरंभ में। ये नामधारी वर्गों का अंधकार भरा दिन था और आदि आदि, परंतु सांझ का उजियाला अन्य जातियों पर चमकेगा, पश्चिमी गोलार्ध। हम अब यहाँ अंत में हैं, हम पश्चिमी किनारे पर हैं। यदि आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप फिर से पूर्व की ओर वापस आ जाएंगे। सभ्यता की यात्रा इसी प्रकार है। इसलिए सांझ के उजियाले चमक रहे हैं। यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। हम प्रार्थना करें। अब प्रभु ये सब तेरे हैं। वचन का विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से होता है, और परमेश्वर आप अपने वचनों को लोगों पर ये सिद्ध करने के लिए प्रकट करते हैं कि आप परमेश्वर हैं। अब आज प्रातः ये मालूम हो जाए कि आप परमेश्वर हैं और मैं आपका दास हूँ। उन्हें अनंत जीवन का सत्य बता रहा हूँ। यीशु मसीह हमारे प्रभु के द्वारा हम मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि बिली ने मुझे वहां बताया है कि प्रार्थना पत्रों का एक बड़ा गट्ठर है। यहाँ बहुत से लोग हैं। आप ये जानते हैं कि हम सब लोगों को ऊपर नहीं बुला सकते ये सिद्ध करने के लिए या केवल आप देख सकें। अब परमेश्वर को ये नहीं करना है और प्रत्येक ये जानता है। जब यीशु पृथ्वी पर था तो उसे प्रत्येक को चंगा नहीं करना था, क्या आप ये जानते हैं? परंतु उसने ये किया ताकि वो पूरा हो सके जो भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया था। क्या ये ठीक है? वो ये करता है ताकि वचन पूरा हो, जैसा सादोम के दिनों में था ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। आप देखते हैं कि सादोम के दिनों में उनके पास बिली ग्राम और ओरल रॉबर्ट थे। उनके समान लोग नीचे गए और उस नगर में सादोमियों को प्रचार किया, परंतु चुना हुआ अब्राहम और उसका झुंड बाहर बुलाया गया झुंड था, बाहर एक और। किस प्रकार का स्वर्गदूत पीछे रुक गया और उन्हें प्रचार किया? ध्यान दें, वो मनुष्य वहाँ बैठा था, कहा कि वो किसी बाहर देश का परदेशी था, उसके कपड़ों पर धूल थी, उसने बछड़े का भाग खाया और उसकी माँ से दूध पिया, कुछ मक्के की रोटियाँ अब्राहम के साथ खाई, जबकि हो सकता है वहाँ मक्खियाँ हों, उन मक्खियों को उड़ाकर भगा रहा हो, जबकि वो ये कर रहा था, वहाँ बैठा हुआ खा रहा था। और उसके पश्चात जब वो चला गया अब्राहम ने उसे एलोहिम सर्वशक्तिमान कहकर पुकारा, परंतु वो एक मनुष्य था, परमेश्वर अपने लोगों में। अब देखिए उसने क्या किया, वो कैसे जानता है। उसने वहाँ बैठकर अब्राहम से बातें की, उसने कहा अब वो पहली बार अब्राहम से मिला, अब्राहम ने उसे पहली बार देखा और जानबूझकर। और ये दोनों पुरुष नीचे सादोम में जाने वाले थे और उन्होंने नीचे जाकर वहाँ प्रचार किया और लोगों को अंधा कर दिया। क्या सुसमाचार का प्रचार ये नहीं करता कि अविश्वासियों को अंधा कर दे? ध्यान दें, परंतु ये वाला अपनी चुनी हुई कलीसिया के साथ पीछे खड़ा रहा, अब्राहम और उसका झुंड, खतना किए हुए, वो वास्तविक वाले। उसने कहा लूत वो था जो नगर में था और उसका शानदार समय, और देखिए कि उसकी पुत्रियां कैसी थीं और उसके पुत्र कैसे थे और आदि आदि। ऐसे ही जैसे आज का संसार, सादोम, पाप और हर चीज, ये नाम की कहलाने वाली कलीसिया। परंतु आत्मिक कलीसिया बाहर बुलाया हुआ झुंड है, अलग किया हुआ। उनके पास किस प्रकार का दूत आया? अब हम इस पर ध्यान दें, अब स्मरण रखें। आपके प्रभु ने कहा जैसा ये तब था ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। यीशु ने ऐसा ही कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी भी असफल नहीं होंगे। अब ध्यान पूर्वक सुने और शांत रहें। अब इस स्वर्गदूत ने अब्राहम से बातें की, उसने कहा अब्राहम तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसे कैसे मालूम चला कि वो विवाहित है? उसे कैसे मालूम कि उसके पास एक पत्नी है? और वो कैसे जानता था कि उसका नाम सारा था, अपरिचित था कि नहीं? और अब्राहम ने कहा वो आपके पीछे तंबू में है। उसने कहा अब्राहम, ये देखते हुए कि तू परमेश्वर पर विश्वास करता है और तू संसार सारी अन्य जातियों का स्वामी होने जा रहा है और सारे के सारे वंश तेरे द्वारा राज्य में लाए जाएंगे, तेरे द्वारा तुझसे प्रतिज्ञा की गई है, मैं कोई भी प्रतिज्ञा न रखूंगा अब्राहम, कोई भी बात तुझसे ना छिपी रहूंगी। ओह मुझे ये अच्छा लगता है, मैं तुझसे ये ना छिपाऊंगा अब्राहम, परंतु तूने मुझ पर विश्वास किया है उस बालक के लिए 25 वर्षों तक और अब तू 100 वर्ष का है और वो 90 की है। परंतु अब्राहम के समय अनुसार इस मिलीजुली सभा में आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है, वे 28 दिन, उसका 50 वर्ष या अधिक से रुक गया था, जी हाँ 60 वर्षों पहले। कहा कि सारा के जीवन के समय अनुसार मैं तुझे फिर मिलने आऊंगा और तू उस बालक को जन्माने जा रही है, और सारा उसके पीछे तंबू में पर्दा पड़ा था, अपने आप में हंसी बस और अपने आप में कहा क्या मुझे अपने स्वामी के साथ ये सुख मिल सकता है? आप अपने पति को क्या कहती हैं? क्या मुझे अपने पति के साथ फिर से ये आनंद मिल सकता है, ये देखते हुए कि मैं बूढ़ी हूँ और वो भी बूढ़ा है? और स्वर्गदूत ने अपनी पीठ घुमाई और कहा सारा तू क्यों हंसी? किसने उसे हंसाया? क्या आप नहीं देखते किस प्रकार का आत्मा, किस प्रकार का वो एक स्वर्गदूत, क्या वो वहाँ चुनी हुई कलीसिया से भेंट कर रहा था? अब यीशु ने कहा कि ठीक वही बात इसके आगमन के पहले होगी, ये उसके आगमन का एक चिन्ह होगा। आइए हम प्रार्थना पंक्ति को बुलाएं, जो प्रतिज्ञा उसने की है वो उसे बनाए रखता है। अब वहाँ वो कहीं, मुझे 5 या 6 लोगों को बुलाना है जितने भी यहाँ खड़े हो सकते हैं, बाकी आप सब लोग केवल विश्वास करें। ध्यान दें, यदि आपके पास प्रार्थना पत्र नहीं है और यहाँ आ गए हैं, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, यहाँ पर क्या, यहाँ पर अब्राहम के वंश ने क्या किया? यीशु जब वो पृथ्वी पर था, एक दिन वो लोगों की भीड़ में से होकर निकल रहा था और सब कह रहे थे अरे रब्बी, शुभ प्रातः है, डॉक्टर, आदरणीय आप कैसे हैं, आदरणीय आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, आपको यहाँ पाकर प्रसन्नता हुई, जबकि हम यहाँ पर हैं, हम एक प्रार्थना सभा करने जा रहे हैं। और एक निर्धन साधारण महिला की एक आवश्यकता थी, इसलिए वो भीड़ में उसका वस्त्र छूने के लिए घुस गई, क्योंकि वो अपने हृदय में कैसी थी, यदि मैं इस पवित्र मनुष्य को छू लूं, देखा उसका विश्वास, समझे, यदि मैं उसे छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसलिए उसने उसे छुआ और वो पीछे से भीड़ में घुसी। उसने कहा ओ मैं निश्चित हूँ कि मैं चंगी हो गई हूँ, क्योंकि मैं ये विश्वास करती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं चंगी हो गई हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा लहू बहना अब बंद हो गया है, मैं बस ये विश्वास करती हूँ। यीशु रुका और बोला, कहा किसने मुझे छुआ? क्या ही प्रश्न है। दूसरे शब्दों में पतरस ने कहा प्रभु तुझे क्या हो गया? बाइबल ने बताया कि उसने उसे डांटा, कहा इससे तेरा क्या मतलब है, क्यों? तुझे तो सब छू रहे हैं, तू ये कैसे कहता है? तू मसीह होने के नाते क्या तुझे डर नहीं लगता कि इन लोगों के सामने तू स्वयं को गिरा रहा है? मुझे किसने छुआ? मैं शर्त से कहता हूँ कि पिछले मिनट में तुझे 500 ने छुआ, और तू ऐसी बात को अब क्या कहेगा? उसने कहा, परंतु ये छूना भिन्न था, मुझे अंदर से निर्बलता का अनुभव हो रहा है। ईश्वर दत्त गुण, कोई भी जानता है ईश्वर दत्त गुण सामर्थ्य है। मैं निर्बल हुआ हूँ, मुझ में से शक्ति निकली है। और उसने चारों ओर इधर उधर देखा, देखिए वहाँ कहीं विश्वास था। उसने चारों ओर देखा, उसने एक साधारण सी महिला को देखा, उसके अंदर पवित्र आत्मा भरपूरी में था। उस साधारण महिला की ओर निर्देशित किया कि उसे लहू बहने का रोग था। उसने कहा, तेरे विश्वास ने अब मैंने तुझे कभी नहीं चंगा किया, मेरा तेरे से कभी कोई सरोकार नहीं, परंतु तेरा विश्वास किसमें? परमेश्वर में, जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब बाइबल ये कहती है कि वो कल आज और सर्वदा एक सा है। वो सिद्धांत में वैसा ही है, सामर्थ में वैसा ही, विचार भाव में वैसा ही है। वही परमेश्वर जो मसीह में रहा कलीसिया में रहता है, इसका उतना नहीं, उसमें परिपूर्णता में था, हम में हिस्से से। परंतु समुद्र में से आपके पास एक चम्मच पानी हो, वही रसायन जो पूरे समुद्र में है, चम्मच में है। आपको स्मरण है, ये ठीक बात है, ये वही परमेश्वर है। अब हिब्रू में बाइबल कहती है, उसने कहा कि यीशु मसीह इस समय महायाजक है, जो कि हमारी निर्बलता की भावनाओं से छुआ जा सकता है। आप में से ये कितने जानते हैं? अच्छा, यदि वही महायाजक है तो ये वो वैसे ही व्यवहार ना करेगा यदि वो छुआ गया था? हम क्या हैं? उसका मुंह? हम स्वयं को उसे समर्पित करते हैं और हमारे शब्द नहीं हैं। कुछ न सोचें कि आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप नहीं बोल रहे हैं, ये पिता जो आप में है वो बोलता है। कहीं से भी वो कहाँ था बिली, 150 या 100? 100। अक्सर लोग पहले पत्र के लिए एकत्र होते हैं, इसलिए हम एक मिनट के लिए उसे छोड़ देंगे। हम किसी अलग से अंक से आरंभ करेंगे। चलिए 30 प्रार्थना पत्र किसके पास है, अपना हाथ उठाएं। अक्षर क्या है? बी 30। ठीक है, अपने अपनी जेबों में देखें, अपने पत्र को निकाल लें। और यदि वो, अच्छा सुनिए, यदि कोई 30 नहीं है, क्यों, हम कहीं और से आरंभ करेंगे। ओ मुझे खेद है, मुझे खेद है। ठीक है श्रीमान, आप यहाँ आ जाएं। 31 प्रार्थना पत्र, 31 किसके पास है? 31, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? 31 श्रीमान यहाँ आ जाएं। 32
यू यंग लेडी। 33 हू हैज प्रेयर कार्ड 33 वुड यू रेज योर हैंड, दिस लेडी हियर, ऑलराइट सिस्टर। 33 34, the prayer card 34, you sir. 35 36 36, who has prayer card 36? Did I miss it? You have 36, young lady. 37, this lady was confused. Sure, find out what's your prayer card number, see where she's at. 35, I'm sorry lady. All right, get your place. The boys there will place you where you're to be. 37, 38, 39, 40. Let's see them raise up. There's three now. 38, 39, 40. 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I guess that's it. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Let them prayer cards come forth. Prayer card up to 45, from 30 to 45. Now, if you can't get up, have you a prayer card, sir? Do you? I don't see but one cripple man. He's sitting here in a wheelchair. Now, if there's anyone without any of them prayer cards, now we don't know. I guess I'm getting a jam there. So okay. All right. I'll stop it just a minute. All right. We don't have no room here, see, to have it done orderly. Now, how many in here does not have a prayer card, and yet you're sick, and you want God to heal you? Raise your hand. Well, it's practically everywhere. I suppose, just about everywhere. All right, now, I'm going to ask you, if you will, for these next few minutes, which I've took over my time now, but here is the showdown, whether this word's right or not. This proves it. Now, let me have your undivided attention. Anyone here knows that if I could, I'd heal every one of you. But the Bible said that I'm the Lord thy God who heals all thy diseases. It's based upon a faith. All these things that I've preached this week, up to this time, and down through my life, has been based upon the finished works of Christ at Calvary. If you believe it, that's all God asked. If you'll believe it, you should have what you asked for. Now, as far as signs and wonders to appear, he promised that. First, he said in the church what? Apostles, prophets, teachers, evangelists, pastors. That's God's order set in the church to perfect the saints. Now, I want each one of you to give me your undivided attention. Now, there's just about one person in that prayer line that I think that I know, and that's the man with the white suit on. I can't call his name, but I believe he's from somewhere about the up around Carolina or something. He's a car dealer or something.
उससे बाद मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता, परंतु मैं और खुले तौर पर मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या मामला है। परमेश्वर ये जानता है उसके साथ क्या गड़बड़ है। मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु मैं सोचता हूँ बाकी वे सब मेरे लिए अपरिचित हैं। मैं उन्हें नहीं जानता। आप में से कितने हैं जो जानते हैं कि मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता? अपने हाथों को उठाएं। जी हाँ श्रीमान। अब बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आता है तो वो पहली चीज जो पवित्र आत्मा करेगा क्या? जो मैंने तुम्हें सिखाया उन बातों को प्रकट करेगा। क्या ये ठीक बात है? तब फिर वो क्या करेगा? आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा, हृदय के गुप्त बातों को प्रकट करेगा। वो उन्हीं कार्यों को करेगा जो यीशु ने किए। अब आप में से कितने ये विश्वास करते हैं कि यीशु ने कलवरी पर उद्धार और चंगाई की योजना को पूरा कर दिया? निश्चय ही। इसलिए जहाँ तक कि ये पूर्ण हो गया है कि नहीं? ये पूरा हो चुका। परंतु केवल एक बात जो वो कर सकता है कि आपको चौंका दे या आपको उस समझ तक लेकर आए कि वो अब भी परमेश्वर है और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है। इसलिए ऐसा करने में वो प्रचारकों का अभिषेक करता है। यही वे भले मनुष्य चारों ओर यहाँ खड़े हैं और बहुत से वहाँ पीछे, वो उन्हें प्रचारक के लिए अभिषेक करता है। मैं प्रचारक के लिए एक निर्बल एवजी हूँ। आप देखिए, बजाय इसके वो मुझे ये मेरे प्रचार के लिए देता है, क्योंकि मैं अशिक्षित हूँ और कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं मेरा शिक्षित होने से क्या अर्थ है, या कुछ भी, या एक छात्र। परंतु वो इन मनुष्यों को ये करने का सौभाग्य देता है और वो प्रेरणा में उठकर और प्रचार करते हैं। ओ, जो मैं एक घंटे में कहता हूँ उसे वे पाँच मिनट में कह सकते हैं, क्योंकि उस प्रेरणा में एक तोप के समान या एक मशीन गन इसे फटाफट लेते हुए आते हैं, जैसे कि बारी बारी हथौड़ा चलता है। समझे? देखिए, मेरा वरदान कुछ और है। मुझे अपना समय लेना होता है और जो ध्यान करना होता है और प्रतीक्षा करते हुए और देखते हुए कि पवित्र आत्मा क्या।
If it's just preaching, you walk away, well, you don't know it. But if he comes around and proves that what he said is the truth, then, brother, it's on your lap then. That's right. It's you. Now, if the Holy Spirit will come this morning in the audience and do exactly the way he did when he was in Jesus Christ, how many of you will believe that God was once over us, then with us in Christ, now in us in the church? Sure. Now, if you can see now, you don't have to have hands laid on you. If you're a real believer, while Peter spake these words, the Holy Ghost fell on them.
Yeah,
I do not need to come lay hands on my servant. Just say the word, that's all you have to do. See whether you're seed of Abraham now. Let God do the rest. Heavenly Father, as a man, as a servant, that's my finished word. You speak from hereafter, Lord. Let it be so that they'll know that you're God in the midst of the people. In Jesus' name, amen. Now, the man is the man, just like, I'll say that when Nathaniel came before Jesus, as far as I know, we've never met. We're strangers to one another. But God knows the man. I do not know him. In my memory, I've never saw him unless just happened to be on the street somewhere, met him out here, shook his hand, or said, how did you, sir, or something other morning, is all I know. But God knows the man. Now, if Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, then if this man is sick, then as far as healing, he's already done it.
पहले ही पूरा कर चुका है, परंतु किसी भी तरह से उसे विश्वास करवा ले कि ये जान जाए कि यीशु मसीह ठीक यहाँ पर है। अब यीशु ने क्या कहा? जैसे कि चिन्ह सादोम में था, ऐसे ही अंत के दिनों में किया जाएगा। जो काम मैं करता हूँ, ये दर्शाते हुए कि वो वही है जो अब्राहम के साथ था। इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूँ, वो वही स्वर्गदूत था, और यहाँ पर वो यहाँ पर है, यहाँ इस प्रातः वही स्वर्गदूत हम में रह रहा है। अब वो मनुष्य धोखेबाज हो, वो ढोंगी हो सकता है, वो नास्तिक हो सकता है, वो संत हो सकता है, वो मैं इनके विषय में कुछ नहीं जानता, ये केवल यहाँ खड़ा है। परंतु यदि वो पवित्र आत्मा आएगा और इसे प्रकट करे, तो अब से आगे यही निर्णय ले, वो जानता है। यदि पवित्र आत्मा इन्हें बता सकता है कि इनके जीवन में क्या था, निश्चय ही वो, यदि ये सत्य है, तो ये विश्वास कर सकते हैं कि इनके जीवन में क्या होगा। क्या ये ठीक है? यदि ये बता सके कि क्या था, आगे क्या होगा, अब ये जान जाएंगे कि ये ठीक है कि नहीं। क्या ये इसी प्रकार था?
डॉक्टर, यू बिलीव दिस, यू एंड मदर बोथ, यू बिलीव इट।
डॉक्टर, आप इसका विश्वास करते हैं? आप और माता जी दोनों, आप ये विश्वास करते हैं? और दूसरा भी डॉक्टर पीछे बैठा हुआ है, स्प्रिंगफील्ड मसूरी से, देखा? अब पवित्र आत्मा यहाँ पर है। वहाँ सफेद बालों वाला व्यक्ति वहाँ एल्बन मोटल में ठहरा हुआ है। आप एक ओर से किसी बात से पीड़ित हैं। आप यहाँ पर आरंभ से नहीं है, आप कनाडा से हैं, ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर, आप फिनलैंड से आए हैं, कीटोस, परमेश्वर आपको आशीष दे, घर जाइए, आप अच्छे हैं, यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया। आप विश्वास करते हैं कि मैं इस मनुष्य को नहीं जानता? मैं नहीं जानता कि मैंने उससे क्या कहा, ये पवित्र आत्मा बोल रहा था। दूसरा अपरिचित, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, मैंने अपने जीवन में इसे कभी नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि हम अपरिचित हैं। श्रीमान, क्या ये ठीक बात है? मैंने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा, इसके विषय में कुछ नहीं जानता। अब वास्तविक रूप से श्रद्धामय हो जाएं। और यदि मैं इस व्यक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता और प्रभु मुझे इसके विषय में कुछ बताए, तो निश्चय ही इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि इसे करने के लिए मनुष्य से कुछ अधिक है। क्या ये ठीक बात है? अब यदि आप वास्तव में श्रद्धामय होकर देखें और ध्यान पूर्वक, और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर इस प्रकार टूटता है, तो इसे आप स्वीकार करेंगे, विश्वास करेंगे अपने संपूर्ण हृदय के साथ। एक अपरिचित, पहली बात, आप उद्धार को खोज रहे हैं, आप शराबी हैं, ये बिल्कुल ठीक है, आप इस नगर से नहीं हैं, आप दूसरे नगर इंडियाना नगर से हैं। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, न्यू कैलस, कुछ इस प्रकार, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप जो भी हैं, किसी के साथ हैं। दूसरा, मैं किसी को देखता हूँ, आप एक महिला के साथ हैं, ये संबंधित है। लाइल वुड कहाँ है? ये इसकी पत्नी है, वो अब यहाँ पर है, वो भी प्रार्थना करवाना चाहती है। जी हाँ श्रीमान, आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे आपकी परेशानी क्या है बता सकता है? वो अपने पूरे हृदय से विश्वास करेगी तो वो ठीक हो सकती है। मैं आपके अंदर के उस शैतान को दोषी ठहराता हूँ जो आपको शराबी बनाता है। यीशु मसीह के नाम में घर जाइए और इसे फिर ना पिए, उसके बहुमूल्य नाम में बपतिस्मा लें पापों को धोने के लिए, और मैं शैतान को दोषी ठहराता हूँ, हो कि वो आप में से निकल जाए। आमीन। बढ़ते रहिए श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, और फिर पाप ना करें, परमेश्वर में विश्वास रखें, संदेह ना करें, अपनी संपूर्णता से जो आप में है विश्वास करें। नवयुवती हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। आप विश्वास करती हैं कि मसीह हम दोनों को जानता है? यहाँ पर ऐसा ही है जैसे वो स्त्री कुएं पर थी और हमारा बचाने वाला। आप वो नहीं हैं, ना ही मैं वो हूँ, परंतु उसका आत्मा सदा जीवित है। स्त्री, ये युवा महिला यहाँ पर खड़ी है, यदि आप इसे देख सकते हैं कि उसके और मेरे बीच में ये स्वर्गदूत की ज्योति यहाँ पर खड़ी है, परंतु उसके आगे वो छाया है और वो छाया मृत्यु है, अंधकार। ये कैंसर है और ये कैंसर मलाशय में है, न ही आप इस स्थान से हैं। आप एक केंटकीयन हैं, ला ग्रांगे केंटकी। ये ठीक बात है। श्रीमती जॉनसन को बताया कि वो क्या है। यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगी तो घर जाएं। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। आप ये विश्वास करती हैं? मैं शैतान को जो इस महिला के जीवन को ले रहा है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के आधार पर निकम्मा ठहराता हूँ। मैं अब शैतान को चुनौती देता हूँ और उसे बताता हूँ कि वो हारा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह इसे कैलवरी पर हरा चुका है। और परमेश्वर के दास के समान पवित्र आत्मा के अभिषेक में जो प्राधिकार मुझे एक स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया है, मैं इस महिला के जीवन के लिए इस शैतान को निकम्मा करता हूँ। ओ प्रभु, उसे जीने दें। आमीन। आनंदित और प्रसन्न होते हुए घर लौट जाएं, प्रभु का धन्यवाद करते हुए। अब संदेह ना करें, अपने मस्तिष्क में संदेह ना रखें। महिला, आप इसके प्रति बहुत ही सच्ची और निर्दोष दिखाई पड़ती हैं। यदि आप ये विश्वास करें तो उस गांठ की परेशानी जिससे आप पीड़ित हैं, जोड़ों का दर्द, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, ये आपको छोड़ देगा। अब ये साधारण महिला ठीक यहाँ पर कुछ अनुभव कर रही है, देखिए, क्योंकि इन दोनों के मध्य में आत्मा है। आप भी ठीक हैं, केवल अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। और संयोगवश वो छोटी महिला जो वहाँ उससे अगली वाली है, जी हाँ, आप जो वहाँ बैठी हैं, ऊपर देखकर प्रार्थना कर रही हैं, ओ, वो पीठ का रोग, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। और आप भी, आपको भी पीठ का रोग है, इसलिए आगे बढ़िए और अब चंगे होकर घर जाएं। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? आप यहाँ अपनी पुत्री के लिए हैं। आपकी पुत्री पर मृत्यु का साया है, ये कैंसर है, और उसकी आत्मिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। जी हाँ श्रीमान, वो ऊपर नीचे अंदर बाहर चारों ओर से धुली हुई है। आप देखें कि जो रुमाल आपके हाथ में है, आप विश्वास करती हैं कि ये पवित्र आत्मा यहाँ बोल रहा है? मुझे वो रुमाल दे दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं महिला की पुत्री की दशा को निकम्मा ठहराता हूँ। उसकी माँ के शब्दों पर ये उस पर प्रभावित हो, यीशु के नाम में। आमीन। जाइए, संदेह न करें, विश्वास रखें। अब वो घर जा सकती है। उस पर ये रुमाल डाल दें, विश्वास करें, परमेश्वर में विश्वास रखें। वहाँ एक महिला है, यदि आप उसे देख सकते हैं, उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, उसका रुमाल उठा हुआ है, प्रार्थना कर रही है, अपनी आंखें पोंछ रही है। बहन, आपने कुछ छुआ है, आपने मुझे नहीं छुआ, परंतु आपने उसे छुआ है। आपको नसें फूलने, महिला रोग, सब प्रकार की उलझने हैं, ये ठीक बात है कि नहीं? यदि ये सही है तो अपना हाथ उठाएं। ठीक है, अब घर जाइए और चंगी हो जाइए। उसने क्या छुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसे? उस महिला ने क्या छुआ? महायाजक को। क्या आप पहचान सकते हैं? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उपस्थित है। यदि तू विश्वास करे, आत्मा श्रोतागणों में है, विश्वास कर रहे हैं। वो अग्नि स्तंभ जो यहाँ इस चित्र में है, श्रोतागणों में घूम रहा है। यहाँ एक महिला है जो सीधे मेरी ओर देख रही है, ये उस पर ठहरा हुआ है, इस प्रकार से हाथ ऊपर है, उसके मुंह में रुमाल है, सिर में परेशानी है, एक प्रकार की मस्तिष्क तंत्रिका की दशा। ओ, ये ठीक बात है। क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं उसका भविष्य देखता हूँ? आप विश्वास करते हैं कि मसीह आपसे बातें कर रहा है? घर जाएं, आप इस पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। वहाँ जो पुरुष उस महिला के पीछे बैठा हुआ है, उसके साथ कैमलबेल विले केंटकी का कोई और संबंध है। आपको तंत्रिका का रोग भी है, प्रोस्टेट ग्रंथि, उच्च रक्तचाप। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं श्रीमान? यदि ये बातें ठीक हैं, तो आप अपना हाथ उठाएंगे। आपने क्या छुआ? आपने किसी को छुआ है? महायाजक को जाइए, विश्वास कीजिए और चंगे हो जाइए। यहाँ एक महिला भारी वजन की यहाँ पर अपने हाथ उठाए बैठी हुई है, उसके चारों ओर। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उस महिला को जानता हूँ, मैंने इसे कहीं पर देखा है। वो प्रार्थना कर रही है, उसके सिर में परेशानी है, और जैसे ही मैंने जब सिर कहा उस दूसरी महिला से अभी कुछ क्षण पहले, तो वो प्रभावित हुई। इसे भी सिर की परेशानी है। मैंने इस महिला को कहीं देखा है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, परंतु मैंने इसे देखा है। ओ हाँ, आ गया, अब मैं जान गया आत्मिक रीति से भी। ये लुइसविले केंटकी से रोज ऑस्टिन है। अब विश्वास करें और घर जाएं, चंगी हो जाएं। मैं आपको जानता हूं, मैं आपके चेहरे को पहचानता हूं। मैं एक ट्रेलर में आपके साथ एक साक्षात्कार में था, जहां आपने पवित्र आत्मा पाया था। ये ठीक बात है, आपके ऊपर हाथ रखे और पाया। इस समय मुझे आपका नाम स्मरण नहीं हो रहा है, परंतु मैं आपको जानता हूं। आपका कार का व्यवसाय है, मैं बस इतना जानता हूं। मेरे पास कोई विचार नहीं है कि आपके साथ क्या परेशानी है, कोई अनुमान नहीं। आप जानते हैं, ये ठीक बात है। यदि परमेश्वर बताएगा कि क्या परेशानी है, तो वही जिसने आपको पवित्र आत्मा दिया आपको चंगा कर सकता है, आपको आपके हृदय की मनोकामना दे सकता है। विश्वास करते हैं? आप यहाँ अपने लिए नहीं है, ये आपकी स्थिति नहीं है, ये आपके किसी प्रिय। ये एक बहन वर्जीनिया में है, पीठ की एक प्रकार की पीड़ा। आपकी पत्नी वहाँ बैठी हुई है, वो भी आवश्यकता में है। वो विश्वास करेगी तो पुराना हृदय रोग और चीजें उसे अभी छोड़ जाएंगी, वो चंगी हो जाएगी। ये महिला जो ठीक यहाँ पर है, आपसे संबंधित है। ये यहाँ आपकी माँ है। ये इस बात से चिंतित है कि उसके पास पवित्र आत्मा है कि नहीं। इन्हें मूत्राशय का रोग भी है, जो इन्हें परेशान कर रहा है, और कुछ और भी है। वहाँ जो बलिष्ठ डॉक्टर है, उसने कहा है ये गिरा हुआ गर्भाशय है। आपका कुछ समय पहले ऑपरेशन होना था। आपका ऑपरेशन ना होने के लिए वो जिम्मेदार है। वो चाहता था कि आप यहाँ आकर प्रार्थना करवा लें। जो ठीक आपके पीछे खड़ी है, आपके रिश्ते में है। वो युवा महिला किसी प्रकार से रिश्ते में लगती है, परंतु वो विवाह के द्वारा है, विवाह के द्वारा भतीजी। वो भी अपने उद्धार के विषय में चिंतित है, ये ठीक बात है, और इसे प्रमेह रोग है। वो युवा महिला है, बिल्कुल सही बात है। आप विश्वास करती हैं? आइए अपने हाथ परमेश्वर के लिए उठाएं। ओ प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले, जीवन के रचियता, अच्छे वरदानों के देने वाले, अपनी उपस्थिति को अपने लोगों के मध्य में भेज। प्रभु, उनके हृदय की इच्छाओं को उन्हें दे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इन लोगों को आशीषित और इनकी आवश्यकताओं को प्रदान करेंगे। यीशु मसीह हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। कितने विश्वास करते हैं? मुझे याद नहीं, परंतु जो भी है, ये इस वाली पंक्ति पर चला गया किसी पर। क्या ये सब सत्य था? अपने हाथ उठाएं। जिसने भी आपसे बातें की, क्या वो सत्य थी? सब सत्य है। तो ये भी सत्य है कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। क्या ये सत्य है? आप मुझ पर उसका दास होने का विश्वास कीजिए। मैं जानता हूँ आप बेचैन थके हुए हैं। देखा, संदेह ना करें, अब विश्वास करें कि ये वही है। वो आंधी का शब्द जो पेंतेकुस्त के दिन आया, उस ऊपर की कोठरी में, ये वही चीज है जिसने इन लोगों को प्रभावित किया जब उसे लिया गया, क्योंकि ये वही पवित्र आत्मा है। ये इस समय आपके चारों ओर प्रत्येक के पास मंडरा रहा है। बाहर भीड़ में पवित्र आत्मा आपके मध्य में है। कितने, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ईमानदारी से रहें, जैसे कि इस बाइबल के साथ जो मेरे सामने है। कितने इस विचित्र अनुभव को अनुभव कर रहे हैं कि कुछ उनके आसपास आया है? ये पवित्र आत्मा है, ये वो है। अब मेरा विश्वास करें कि मेरे शब्द सच्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सत्य बाइबल के द्वारा समर्थन किया है, विज्ञान अनुसंधान द्वारा समर्थन किया है। तो फिर सिद्ध करने के लिए और कुछ नहीं है, वो परमेश्वर है, वो यहाँ पर है। तो फिर मेरी सुने, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, आप में से प्रत्येक इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में है कि चंगे हो जाएं। आप लोगों का समुचित झुंड, आप विश्वास करते हैं? अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या चाहता हूं कि आप करें। मैं केवल ये चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी हों, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर हाथ रखे, इसलिए कि आप देखेंगे कि ये मैं नहीं हूं। आप भी वैसे ही प्रभावशाली हैं, आप विश्वासी हैं। यदि आप ये अनुभव करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, हो सकता है इस प्रकार का वरदान नहीं, परंतु पवित्र आत्मा आपके ऊपर है।
Someone, no matter who it is, lay hands on somebody.
कोई मतलब नहीं कि ये कौन है। किसी के ऊपर अपना हाथ रखें और अपने सर को झुका लें, किसी के ऊपर भी रखें।
I feel led to do this. I feel that it's time.
मुझे ये करने की अगुवाई का अनुभव होता है। मैं ये अनुभव करता हूँ कि ये आपकी चंगाई का समय है, यदि आप विश्वास कर सकें।
ओ,
पवित्र आत्मा श्रोता ग्रहणों पर मंडरा रहा है। वो व्यक्ति वहाँ जॉर्जिया से, उस वहाँ बैठे हुए भाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, विश्वास रखें और भरोसा करें।
ओ,
ये चारों ओर है, हर तरफ है। अब क्या आप अपने लिए प्रार्थना नहीं करेंगे? आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिसके ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है, इससे आप सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। अब प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र, जो मृतकों में से जी उठा, यहाँ तक कि पिलातुस और रोमी सरकार की धमकियाँ और मोहर उसे कब्र में न रोक सकी, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईस्टर के दिन नीचे उतर आया और पत्थर को पीछे लुढ़काया, मोहर को तोड़ा और तू जीवित हो उठा और 40 दिनों तक अपने चेलों के साथ रहा, उन्हें समस्त संसार में जाने का प्राधिकार दिया और उन चीजों को करो जो अब हो रही हैं, जो कि 2000 वर्षों पहले हुई थी। प्रभु तू परमेश्वर है, आप असफल नहीं हो सकते, आप यहाँ पर हैं। आज की प्रातः ये परामर्श सभा जो हमारी हुई, हमने इन बातों के विषय में आपस में वाद विवाद किया, हमने विवाद किया कि आप परमेश्वर हैं, विवाद किया ये विवाद कि आप परमेश्वर हैं और ये तर्क कि आप यहाँ हैं, और अब ये प्राधिकार आपसे हमें मिला है कि एक दूसरे पर अपने हाथ रखें। यही है जो आपने हमें करने का प्राधिकार दिया है। आपने कहा जो विश्वास करेंगे उनके चिन्ह ये होंगे, यदि वे अपने हाथों को बीमारों पर रख देंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। सम्मेलन से ये हमारा प्राधिकार है। अब प्रभु आज्ञाकारिता बलिदान से अच्छा है, ध्यान से सुनना बजाय मेड़ों की चर्बी से। अब प्रभु आपका दास होने के समान मेरा प्राधिकार और हर शैतान, हर आत्मा, हर बीमारी, हर वेदना, हर विरोधी बात जो इन लोगों को परेशान कर रही है, आज्ञा देता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा, उस स्वर्गदूत के प्राधिकार जिसने मुझे भेजा, मैं इस आत्मा को परमेश्वर के वचन के द्वारा चुनौती देता हूँ। बीमारी और वेदना की आत्मा लोगों में से प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा बाहर निकल आए और उन्हें स्वस्थ होने दे, उन्हें जाने दे। शैतान, तू केवल एक धोखा है, हमने तुझे चुनौती दी है। वो समय आ गया है जब यीशु मसीह ने स्वयं को अन्य जातियों की उपस्थिति में प्रकट किया है। अब शैतान तू हरा हुआ है, एक समय तूने लोगों को पकड़ रखा था, अब तेरे पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने तेरा हर अधिकार जो तेरे पास था कैलवरी पर छीन लिया, उसने पूरा दाम चुका कर और कहा ये पूरा हुआ। उद्धार की हर पूरी योजना, सारी चंगाई, सब कैलवरी पर पूरा हो गया और आप अपने आप से ले लिए गए हो, पाप के और गिरावट में होते हुए जो एक समय तुम्हारे पास था। अब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ा लिए गए हैं और तू अब और हमें पकड़े हुए नहीं रह सकता। हम कहते हैं हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे। अब अपने हाथ एक दूसरे पर रखें, प्रार्थना करते रहें, अपने हाथ रखें, प्रार्थना करते रहें। आप में से प्रत्येक ये सोच रहा है परमेश्वर समीप है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, परमेश्वर मुझे चंगा कर रहा है, उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी प्रतिज्ञा मुझ में वास्तविक बन गई है। हम सप्ताह दर सप्ताह प्रचार करते रह सकते हैं, अब इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, ये केवल यही कर सकता है। ठीक यहीं रहिए। इस समय मैं विश्वास करता हूँ, मुझ पर प्रकट करता है, मुझ पर सिद्ध कर रहा है कि परमेश्वर यहाँ पर है। मैं उसका विश्वास करता हूँ, ये पूर्ण किया गया कार्य है, ये मेरे पास है, ये मेरी धरोहर है। अब मैं पवित्र आत्मा से भर रहा हूँ। मेरे रोग, मेरे दर्द और मेरी पीड़ाएं मुझे छोड़ रही हैं। मेरी सारी वेदनाएं मुझसे दूर जा रही हैं। प्रार्थना करने की यही विधि है, अपने झुके हुए सिरों के साथ आंखें बंद। ओनली बिलीव। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ अब हम धीरे धीरे इसे गाएंगे। पहाड़ पर से उतरते हुए मिर्गी वाला बच्चा, चेले वहाँ पर थे। परामर्श, only believe.